कृष्ण
हरे हरे
हरे
हरे
राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे
नमः विष्णुपादाय
नमः विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय
भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत
श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिनिति नामिने
स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे
नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे
गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषाय शून्यवादी
निर्विशेषाय शून्यवादी
पाश्चात्य देशकारिणे
पाश्चात्य देशकारिणे
गुरवे गौरचंद्राय
गुरवे गौरचंद्राय
राधिका तदालये
राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः
तद्भक्ताय नमो नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयं उदीरये
ततो जयं उदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिके
भक्तिर्भवति नैष्टिके
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च
देवकी नन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय
नन्दगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः
गोविन्दाय नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानन्द
प्रभो नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधर
शिवास आदि गौर भक्त वृंद
शिवास आदि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्णा हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से स्कंजान सिंह के भक्तों के प्रेरणा और परशुराम जी कर्नल साहब और सविता के सहयोग से यहाँ कामेश्वर महादेव मन कामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में जो 7 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण का वाममय स्वरूप व्यास देव की परिपक्व अवस्था में वैदिक साहित्य का पक्का हुआ फल सुखदेव महाराज के मुख से प्रवाहित इस भागवत अमृत का रसपान करने का और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज चौथे दिन के सत्संग में प्रवेश करते हैं। आइए कल के प्रसंग का स्मरण करते हैं। चौथे स्कंद में 7 अध्यायों में दक्ष यज्ञ में परम वैष्णव महान भागवत शंकर जी के अपमान और अवहेलना के कारण यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, यज्ञ विध्वंस हुआ, बड़ा शाप और अभिशाप हुआ और फिर भगवान विष्णु भगवान शंकर जी के कृपा से उन्होंने अपराध की क्षमा की। दक्ष ने क्षमा याचना मांगी तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और यज्ञ संपन्न हुआ। तो धर्म का अनुष्ठान भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए और भगवान के भक्तों का सदा आदर करना चाहिए। निरादर करने की मूर्खता धर्म के फल को नाश कर देती है। फिर 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज जो भगवान की भक्ति तो नहीं करने गए थे, 5 वर्ष के बालक अपने पिता से महान राज्य की प्राप्ति के लिए गए थे, माँ सुनीति के मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प और नारद जैसे समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में मात्र 6 महीने में तपस्या करके भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करके अपने पिता के राज को प्राप्त भी किया और आज तक ध्रुव लोक में विराजमान है और राज अपने उत्तराधिकारियों को देकर हिमालय में बद्री का आश्रम में भगवान के वैकुंठ के विमान में मृत्यु के सर के ऊपर चरण रखकर आरूढ़ हुए और भगवत प्राप्ति की। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ध्रुव चरित्र को 100 बार सुना केवल 10-12 साल में। वो कहते थे जितना इस छोटे बालक को दृढ़ विश्वास था और दृढ़ संकल्प था भगवान को प्राप्त करने का, इसका थोड़ा सा भी हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास जाग जाएगी, भगवान मिल जाता है संतों की कृपा से, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने में सफल हो गया, ये सबके लिए आश्वासन। फिर ध्रुव कुल में ध्रुव महाराज के वंश में उत्तानपाद महाराज के वंश में ध्रुव जैसे महान भगत भागवत के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। बड़े धर्मात्मा महाराज महात्मा थे, यज्ञ करा रहे थे तो यज्ञ में देवता नहीं आए। आखिरी बार यज्ञ में देवता महाराज परीक्षित के यज्ञ में आए, उसके बाद देवता यज्ञ में अभी नहीं आते। पहले साक्षात यज्ञ में देवता आया करते थे अपना, पहले तो भगवान आते थे यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु, फिर जब उसको भोग लग जाता था तो वो प्रसाद सब देवता बड़े प्रसन्नता से पाने के लिए अपना भाग लेने के लिए आते थे। कली काल में अब यज्ञ में देवता तो नहीं आते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि अग्नि में यज्ञ देने से अथवा ब्राह्मण के मुख में प्रसाद देने से भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो महाराज ने पूछा कि हमारे यज्ञ में देवता क्यों नहीं आ रहे हैं। बोला इस जन्म में तो आपका कोई अपराध नहीं है, पूर्व जन्म में किसी पाप के कारण आपको संतान नहीं है पुत्र की, इसके लिए कोई देवता नहीं आ रहे। ऐसी महाभारत में महाराज पांडु के लिए भी ऐसी कथा आती है कि ऋषियों ने कहा कि आपको पुत्र संतान नहीं है इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। तो फिर कुंती के दुर्वासा का श्राप ही उसका वरदान हो गया और 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई, तो पांडु फिर पुत्रवान हो गया।
तो कहा फिर अब पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, पुत्र प्राप्ति के यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ पुरुष निकला, प्रसाद भी यज्ञ का प्राप्त हुआ, लेकिन महाराज अंग की पत्नी काल की पुत्री थी सुनीता, तो ननियाल का वंश जो था वो असुरी कुल का था। बालक पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया वेण। ये बालक बहुत क्रूर था, बचपन में ही पशु मारता था, बच्चों को मारता था। पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बच्चा समझा नहीं। तब एक प्रार्थना में महाराज कहते हैं अंग कि किसी ने कोई पुण्य किया होगा तब उसको कोई दुष्ट पुत्र इस जन्म में नहीं मिला है, अच्छा है, नहीं तो बहुत दुनिया में कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान दुष्ट पुत्र देने से तो पुत्र नहीं होना अच्छा हो। और इतना दुखी हुए, रात रात को राजपाट छोड़ के चले गए, तपस्या करने चले गए। अब राज में अराजकता हो गई। ऋषियों ने कहा ठीक है, वेण दुष्ट तो है, लेकिन जब तक उसकी दुष्टता प्रकट न हो जाए तब तक इसको राज करने का अधिकार दिया जाए। सुनीति माता ने कहा कि मेरे पुत्र को राजा बनाओ, तो वेण को राजा बनाया। वेण राजा बना तो पहले उसने कहा यज्ञ बंद कर दो, ब्राह्मणों का पूजन बंद, मंदिर का जाना बंद, गाय की सेवा बंद। सब ऋषियों ने कहा महाराज आप राजा हो, आपको धर्म के काम करने चाहिए, आप ये यज्ञ क्यों बंद करा रहे हैं, गौ सेवा ब्राह्मण सेवा क्यों बंद करा रहे हैं, ठाकुर के मंदिर क्यों बंद करा रहे हैं। पर आपको मालूम नहीं है कि राजा के अंदर भगवान विष्णु का आवेश होता है, तो फिर तो आप उल्टा ऋषि कैसे हो। मैं राजा हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, आप मेरी पूजा करो, आप भगवान की पूजा करते हो, ये तो आप वैश्यावृत्ति रखते हो। संतों को क्रोध आया, संतों ने हुंकार भरी और वेण के प्राण निकल गए। वेण के प्राण निकल गए, संतों को तो राज करना नहीं था, फिर अराजकता फैल गई। संतों ने कहा ये तो हमारा काम राज करना नहीं है, और ध्रुवंश का विनाश भी नहीं होना चाहिए। सुनीति ने वेण के शरीर को सुगंधित तेलों में सुरक्षित रखा था, ऋषियों ने वेण के शरीर का मंथन किया और अधो भाग से उसके अंदर जो पाप का सारा प्रभाव था वो एक काले कलूटे पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा कहां बैठूं, क्या करूं, बोला निषाद बैठ जाओ। वो निषाद जाति का प्रकट हुआ जो वन में जाने लगी, जिसका मुख्य काम लोगों को लूटना और चोरी करना। अब वेण महाराज के सीधे हाथ का ऋषियों ने मंथन किया तो अंदर से पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार प्रकट हुए, और उल्टे हाथ के मंथन करने से अर्ची लक्ष्मी स्वरूप प्रकट हुए। अब जो ऋषि राज दे सकते हैं वो राज ले भी सकते हैं, और उनमें इतना सामर्थ्य है कि इस मृतक शरीर में और कितने जीव पड़े होते हैं। शरीर मर जाता है, अब में एक शरीर की आत्मा निकलती है, और इसके ऊपर और कितने जीव पड़े होते हैं। और उनके पास ये विद्या थी कि उनके शरीर के मंथन से नवे स्कंद में आएगा तो आपको बताएंगे कि मिथिला, जो मिथिला नगरी है, जनक राजा है, विदेही सीता है, ये सब नाम शरीर के मंथन से जनक के प्रकट होने से हुए। ये भी अपने आप में एक प्रसिद्ध नवे स्कंद की कथा है। अब पृथु और अर्ची के प्रकट होने के ऊपर सारे देवता आए, सबों ने राजाओं को जैसे उपहार देने हैं ऐसे दिए, बड़ा उनका गुणगान होने लगा। पृथु महाराज राजा हुए तब सारी प्रजा हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज हम बहुत परिश्रम करते हैं, पृथ्वी के अंदर हल जोतते हैं, बीज डालते हैं, लेकिन कुछ उत्पादन नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने रथ के ऊपर चढ़ के धनुष के ऊपर तीर बाण का अनुसंधान किया और पृथ्वी के पीछे, और पृथ्वी गाय का रूप लेके आगे भागने लगी, पीछे पृथु महाराज उनका पीछा कर रहे। पृथ्वी ने रुक के कहा महाराज आप भूपति है, आप पृथ्वीपति है, आप भूपाल है, आपको पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, आप मुझे मार क्यों रहे। महाराज प्रथुन ने कहा, मेरी प्रजा को आप उत्पादन करके क्यों नहीं दे रही हैं? पृथ्वी ने कहा, महाराज आपसे पहले वेण जैसे दुष्ट राजाओं के कारण मैंने सारे बीज लुप्त कर दिए। इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि जब पृथ्वी के ऊपर दुष्ट अत्याचारी राजा होते हैं तो हर एक चीज का अभाव होने लगता है और चीजों के भाव बहुत बढ़ने लगते हैं, उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। पृथ्वी माता, पृथ्वी का आदि भौतिक रूप है गाय, आदि भौतिक रूप है ये हमको दिखता है, जो पहाड़ है, धरती है, नदियां हैं, लेकिन आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय माता के रूप में रहती है। अध्यात्म रूप में पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, उसका नाम है भू देवी, श्री देवी लक्ष्मी है जो चल है, और अचल भगवान की पत्नी का नाम भू देवी पृथ्वी है, और पृथ्वी भगवान वाराहदेव की पत्नी के रूप में, और उनका पुत्र भी भौमासुर पैदा हुआ है। तो पृथ्वी को तो कहते हैं पृथ्वी द्वारा धृता लोका विष्णु पत्नी, इसका नाम ही विष्णु पत्नी है। तो पृथ्वी जब जब धरती के ऊपर अन्य अत्याचार झूठे लोग होते हैं तो पृथ्वी उनका भार नहीं उठा पाती है, तो सब चीजें लुप्त हो जाती हैं, चीजों की हर चीज महंगी हो जाती है, मिलना मुश्किल हो जाती है। हमारे घर में जो जो हमारी उम्र के बैठे हैं, 2 रुपया किलो घी गाय का तो हमने लिया, 100 रुपया तोला सोना, 10 ग्राम नहीं, 1 तोला सोना 50 रुपये का, 50 रुपया तोला, 71 में 200 रुपया तोला था। भूमि चार आना मतलब 25 पैसे में वो भूमि मिलती थी गज के साथ, 25 पैसा गज। एक महात्मा कहते थे भगवान का भोग लगाने के लिए वृंदावन में साधु के पास कुछ कभी होता है कभी नहीं होता है, तो आटे में पानी में आटा घोल के और गोबर के कंडे में अग्नि में जला के जो हो जाए उसी को भोग लगा देते। ठाकुर जी बोले, ये हमको तो कुछ तो व्यवस्था करो, अपनी व्यवस्था आप करो, आज कहते हो दूध, कल बोलो खीर, फिर बोलोगे मक्खन, अपनी व्यवस्था अपने आप करो। तो महाराज तो चले गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए पूजा के समय तो 2 रुपया देखा सामने पड़ा, और उस जमाने में 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी। पूछा जो बैठा था पुजारी, कोई आया? बोला कोई आया नहीं। 2 रुपया कौन चढ़ा गया, 2 रुपया चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। तो समझ गए कि आज सुबह हमने ठाकुर जी को कहा है, अपनी व्यवस्था की उन्होंने की। बोला वो 2 रुपया लेके मंडी में गए और कुठार भर गया, सारा सामान इतना आया और अभी तक वो कुठार भरा है, कभी आज तक खाली नहीं हुआ। मतलब ये कि फार इतना भगवान का आने लगा कि कोई चीज में उसमें अभाव आया ही नहीं। तो 10 रुपया तो वेतन हुआ करती थी मास्टर की, 25-50 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी, ये घर गृहस्थी चलती थी इतने में, ये तो आंकड़ों की देखी बात है। उससे पहले क्या हुआ होगा, कोड़ी होती थी, कोड़ी, ये कोड़ियां थी, ये पैसा था, जो बच्चे खेलते थे ना ये पैसा था। तो ये पृथ्वी के ऊपर अत्याचारी राजाओं के कारण बहुत बड़ा असंतुष्ट जनक वातावरण पैदा होता है। कोई संतुष्ट नहीं है, अभी इस वक्त संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे की जरूरत नहीं है। पहले हमको इतनी जरूरत थी, कुम्हार की जरूरत थी, मटका देगा तब पानी पिएंगे, वो बाल बनाने का इस वाले की जरूरत थी कि वो आएगा तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। हर एक दूसरे पैसा नहीं लेते थे, हमारे खेत का उसको अनाज दे दिया, उसने हमारे को मटका दे दिया, तो एक दूसरे के आवश्यकता थी, एक पूरा परिवार जैसा रहते थे। अभी किसी की परवाह नहीं है, बेटे की परवाह बाप को नहीं है, बाप की परवाह बेटे को नहीं, ऐसा वातावरण हो गया है कि धर्म कर्म की बातें तो दूर की बात है, मानव बनना मुश्किल हो गया। 3 बड़े विज्ञानक एक जहाज में जा रहे थे तो अमेरिका वालों ने बोला कि हमने तो ऐसे स्पेस शिप बनाए हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, चांद में जाके पहुंचने वाले हैं। तो यूरोपियन ने बोला हमारे पास तो समुद्र के तले तक जाने वाली सब मेरी हमने बनाई। महात्मा भारत का संत बैठा था, बोला आपकी क्या प्रगति है? बोला क्षमा करना, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, समुद्र में मगरमच्छ तैर रहे हैं, दो पांव से इंसान बनना सिखाने का प्रयास कर रहे, वो नहीं हो रहा है। ये सारा आपका काम हो रहा है, लेकिन दो पांव से इंसान बन के धरती के ऊपर चलना मुश्किल हो रहा है। पहले मानव बनना है, भक्त बनना तो बहुत आगे की बात है, पहले मानवता तो आनी चाहिए। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तुमने भोजन खाया क्या? अब तो अपने घर में कोई भूखा प्यासा भले भैया हो तो भी किसी की चिंता नहीं। हरे कृष्णा। तब पृथ्वी देवी ने कहा, महाराज आप तो अब भगवत अवतार राजा हैं, और महाराज पृथु एक शासन कैसे किया जाए उसका उदाहरण है भागवत में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में रहकर राज के साथ परिवार में कैसे रहना चाहिए, और महाराज पृथु एक अच्छा शासक जो अपनी प्रजा के, प्रजा किसको मानता है। अब यहां पृथु महाराज को गैया ने कहा कि देखो मैं तो, पृथ्वी ने कहा मैं हूं गैया, मैं तब आपको सबके भोजन की व्यवस्था कर दूंगी जब आप योग्य बछड़ा बनाओगे। बगैर बछड़ा के गैया दूध नहीं देती है। तो इंद्र को बछड़ा बना के देवताओं के लिए सामग्री सारी प्रकट की जो देवता खाते हैं। फिर स्वयं ने मनु को बछड़ा बनाया, मानव के लिए अन्न फल फूल की व्यवस्था की। फिर तो शेर के भोजन की व्यवस्था की, सर्प के भोजन की व्यवस्था की। प्रजा का मतलब है जो जीवित हमारे देश में रहते हैं वो सारी हमारी प्रजा है। ये पेड़ पौधे ये भी प्रजा है। राजा का प्रजा केवल मानव नहीं है, पशु पक्षी जो रहते हैं वो भी प्रजा है हमारी, वो भी हमारे घर में रहते हैं या हमारे देश में रहते हैं, तो उनका भी देखभाल हमको करना है। लेकिन हम ना, ये पहले जमाने के लोग ऐसे समझते थे, अब नहीं कोई समझ रहा है। तो उन सब के भोजन की व्यवस्था महाराज पृथु ने की। पृथु ने सब की इच्छा की पूर्ति करी, और बाद में पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान करके बैठा। 99 यज्ञ पूरे हुए, इंद्र को अपने आसन को हिलता हुआ दिखाई दिया। इंद्र का दूसरा नाम है सत्य कृतु। सत्य कहते हैं 100 को और कृतु कहते हैं यज्ञ को। कोई भी 100 यज्ञ अगर अश्वमेध कर ले तो वो इंद्र पद का अधिकारी है, मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट है वो इंद्र के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए इंद्र का नाम है सकर, सत्यकृतु उसको सकर कहते हैं। तो कोई दूसरा 100 यज्ञ करता है तो इंद्र को अपना आसन हिलता हुआ दिखता है। इसलिए इंद्र साधु संन्यासी का वेश पहन के आया और घोड़ा चुरा के ले जाने लगा। तो महाराज पृथु का पुत्र अश्वजीत गया और घोड़े को वापस ले आया। दोबारा इंद्र दूसरे बार साधु का वेश करके आया। महाराज क्रोध में उठे, अत्रि ऋषि यज्ञ करा रहे थे, बोला शांति करो महाराज, यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए। और घोड़ा तो इंद्र से वापस लाए, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, महाराज पृथु आपको 100 यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, बस बंद कर दो। आज इंद्र जैसा देवता साधु के वेश में आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा रहा है, कल लोग साधु के वेश में घर घर जाकर चोरी करेंगे, ये पूरी बुरी परंपरा शुरू हो जाएगी, आप यज्ञ करना ही बंद कर दो। और पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मानी। उस वक्त भगवान विष्णु प्रकट होके आ गए। और भगवान विष्णु आए तो इंद्र भी साथ आया, लेकिन इंद्र को क्षमा करके पृथु महाराज ने गले लगाए। और उस वक्त पृथु महाराज कहते हैं, भगवान देखो हम तो आपके चरणों के प्रेमी हैं, बस हमको एक बात का थोड़ा सा भय है, आपके चरणों को तो लक्ष्मी देवी दबाती है, और मैं जब दबाने लगूंगा कहीं लक्ष्मी नाराज हो जाएगा तो आप किसका पक्ष लेंगे। तो भगवान जरा मुस्कुराए, बोला कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, लक्ष्मी तो बड़ी है मैं छोटा हूं, आपका नाम दीना नाथ है मैं दीन हूं, तो आप मेरा लेंगे ना, वो तो बड़ी है उसका आप तो नहीं लेंगे। और फिर भी मानो आप लक्ष्मी की, मेरी ओर देख के लक्ष्मी को कहेंगे कि ये छोटा सेवक है इसकी गलती को आप क्षमा कर दो, और फिर मेरी ओर और मेरी ओर देख के लक्ष्मी को कहें, लक्ष्मी को ऐसे कहेंगे और फिर मेरे को कहेंगे बड़ी है अगर नाराज होकर कुछ कह जाए तो नाराज मत होना। तो भगवान हंसने लगे और फिर कहा, मुझे तो मुझे तो विश्वास है कि लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी, क्योंकि वो तो माता है ना, तो हम भी तो उसके पुत्र हैं, तो माता कैसे पुत्र से नाराज होंगे। तो ऐसे बहुत बड़ा पृथु महाराज ने भगवान के चरण सेवा के लिए प्रार्थना की। भगवान के अवतार है वैसे, लेकिन भगवान विष्णु को मर्यादा में चरण सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो विष्णु पृथु महाराज, वैसे लक्ष्मी और पृथु महाराज चरण सेवा के भक्त है। यहाँ एक उदाहरण हम देते हैं सावधान करने के लोगों को। अब एक पांव पृथु महाराज भगवान का विष्णु का संवाहन कर रहे हैं, एक लक्ष्मी कर रही है। अब भगवान ने करवट ले ली, पृथु का पांव चला गया विष्णु लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी का पांव और लक्ष्मी वाला पांव पृथु के पास चला गया। फिर क्या करना, क्या करना चाहिए? ए, ले अपना पांव ले, तुम्हारे वाले पांव को हम नहीं दबाएंगे, चुंटी मारेंगे। दर्द किसको होगा? दर्द किसको होगा? विष्णु को ना। अरे संसार के अंदर वो कहता है कि ये मेरा धर्म है, वो कहता है ये मेरा धर्म है, और दोनों पांव एक ही भगवान के, तुम उसको पकड़ के चिपका रहे, तुम ले लो तुम्हारा धर्म, तुमको हम मार देंगे, तुमको हम मार देंगे। मार किसको रहे? एक ही तो मारे के, दो चार बार पांच भगवान तो नहीं हो सकते ना। बस करवट भगवान ने बदल ली तो पांव बदल गया, तो ये मेरा है और ये तेरा है। ये धरती बनाने वाला, एक चलाने वाला, दुनिया में सब बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं, सब रोते हुए पैदा करते, मरते हैं तो सब एक तरीके से मरते हैं, खाकते सब मुंह से, कोई न कान से खाता है ना आंख से खाता है। फिर ये सारे भेदभाव क्यों दुनिया ने बना दी? सनातन धर्म तो एक ही है, वो धर्म आत्मा का है, शरीर का नहीं है। लोगों ने शरीर के धर्मों के झगड़े इतने पैदा कर दिए हैं। आत्मा का धर्म क्या है? अब ये आत्मा का धर्म आपको बताएंगे। आत्मा का धर्म है सेवा करना और प्रेम करना। मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा जीव है, मानव नहीं, कोई पशु पक्षी है जो प्रेम और सेवा नहीं करता? अरे गैया भी अपने बछड़े को चाट के दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? चिड़िया भी घोंसले में अपने बच्चे के लिए दाना ले जाके खिलाती है कि नहीं खिलाती है? तो प्रेम करना और सेवा करना, ये जीव आत्मा का धर्म है और यही सनातन धर्म है। शरीरों के धर्म का नाम नहीं है, ये तो मजहब बदलने वाले हैं। आज एक है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, ये धर्म नहीं है। जो बदले वो धर्म नहीं है, धर्म वो है जो परिवर्तन आ ही नहीं सकता। अब कोई बताओ, कोई सेवा ऐसा, कोई प्रेम और सेवा दुनिया में किसी ने आज तक छोड़ी है? सबको तो प्रेम करना है, किसी ना किसी से तो करना पड़ेगा, किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी, चाहे पत्नी की करो, बेटे की करो, भाई की करो, देश की करो, किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी, किसी से तो प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे प्रेम करने के बाद, इतनी सारी सेवा करने के बाद कोई संतुष्ट नहीं दुनिया में, क्यों? क्योंकि ये धर्म है आत्मा का, और हम समझते हैं कि शरीर से करने से हम सुखी हो जाएंगे। हम ये धर्म है सनातन, और जिससे सेवा करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, वो सामने सनातन नहीं है, वो शरीर छूट गया। मेरा पप्पा से बहुत, मेरे पिताजी से प्रेम था, लेकिन शरीर छूट गया समय के साथ। अब क्या करूं, दुखी हो गया। मैं बड़ी सेवा सेठ की कर रहा था, बूढ़ा हो गया, सेवा नहीं, सेठ ने निकाल दिया, दुखी हो गया। तो फिर सनातन धर्म का अर्थ है सनातन जीवात्मा, उसका सनातन धर्म प्रेम और सेवा। जब वो भगवान सनातन के लिए हो जाएगा तो जीव सुखी हो जाएगा। इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म मेरा तेरा नहीं है, सबका सनातन धर्म है। इससे पहले कोई और धर्म था नहीं, और कोई आएगा नहीं, जिसका ना आद है ना अंत है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ये एक दूसरा मेरा धर्म, तू भगवान अलग नहीं है, सूर्य अलग नहीं है, वायु अलग है, एक वायु में सब सांस ले रहे हैं, एक सूर्य का सब प्रकाश ले रहे, एक धरती का सब अन्न खा रहे, फिर अलग कहां से हो गए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये लोगों ने भेदभाव कहां से पैदा कर दिया? इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। ये धर्म नहीं है, देह आत्म बुद्धि। और इसका दुनिया की धरती के ऊपर धर्म के नाम में जितना अत्याचार हुआ है ना, उतना और किसी नाम में अत्याचार नहीं है। धर्म है ही नहीं तो अत्याचार ही करेगा, और क्या करेगा? ये मेरे धर्म का विरोधी है, इसका मुझे विनाश करना है। ये धर्म सबका एक है, दो है कहां जो तुम विनाश कर रहे हो? किसने पैदा किया इसको? कौन पैदा करने वाला है सबको? तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो पृथु महाराज ने सबके लिए दोष मान लिया, यज्ञ नहीं किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, पृथु महाराज समय आने के ऊपर चार कुमार आके आपको उपदेश देंगे। फिर सेम वैसी बात आ गई, भगवान का दर्शन हो गया, फिर भी संतों के संग की आवश्यकता पड़ रही। समय आने के ऊपर पृथु और अर्जी तपस्या करने के लिए चले गए। और इनके घर में आने से पहले चार कुमार आए, चार कुमारों ने इनको अद्भुत उपदेश दिया। या एक बात आप साथ में बता दें आपको, एक भगवान का प्रेम सेवा करने से सब संतुष्ट हो जाएगा, विश्व संतुष्ट हो जाएगा। उदाहरण इसी पृथु महाराज को शिक्षा देते हुए आगे इसी चौथे स्कंद में ये उदाहरण आया है, प्रचेता और पृथु के प्रसंग में ये उदाहरण आता है कि पेड़ की जड़ में अगर जल देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, टहनियां पत्ते फल फूल सब हरा भरा हो जाएगा। ऐसे एक भगवान की सेवा प्रेम करने से पूरे ब्रह्मांड के सब जीवों का कल्याण हो जाएगा। जैसे पेट में भोजन डालने से सर को भी हाथ को भी पांव को भी शक्ति मिलती है, ये दो उदाहरण दिए गए हैं कि एक भगवान की सेवा से सब संतुष्ट होते हैं। एक दुष्टे जगत दुष्टे, ये महाभारत में उदाहरण मिलता है। एक बार दुर्वासा ऋषि घूमता हुआ हस्तिनापुर चला गया, दुर्योधन ने बहुत अच्छी सेवा की, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब दुर्योधन के मन में तो दुष्ट बुद्धि थी ना, का हमारे ऊपर राजी हो गए हैं, अब इनको मैं अगर पांडवों के पास भेजूं जो वनवास में है वो तो इनकी सेवा कर नहीं पाएंगे, ये अकेले तो चलते नहीं है, 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं, तो उनको शराब देंगे तो अपने आप नाश हो जाएंगे। अब कहते हैं महाराज आशीर्वाद क्या देना है, आप इतना करो कि हमारे भाई पांडव इस वक्त काम्य वन में रह रहे, आप उनके पास अतिथि बन के जाओ, उनको भी आशीर्वाद देना, लेकिन एक ध्यान रखना दोपहर के बाद जाना, क्योंकि सुबह उनका साधना का समय है। उन्हें मालूम था कि दोपहर के बाद तो कुछ होगा नहीं खिलाने का, तब तो अपने आप शराब दे दे। अब दुर्वासा मुनि को तो पांडव की महिमा का भी, वो तो ऋषि हैं, आए बोले महाराज युधिष्ठिर भोजन करना है, हम जमुना नहाने जा रहे हैं, 10,000 शिष्य हमारे साथ हैं, जो आ गया महाराज आप स्नान करने जाइए, द्रौपदी सबके भोजन की व्यवस्था करो। बोला महाराज ये सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र, जब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ तब तो लाखों को खिला सकती हूँ, लेकिन अब मैंने खा लिया अब कैसे खाएंगे, कल ही लाएगा। बोला फिर तो बड़ा संकट हो गया, बड़ा संकट हो गया तो अब क्या करें। तो द्रौपदी ने कहा है, जब कोई और सहारा नहीं है तो आए कृष्णा कृष्णा, भागता हुआ भगवान आया और आके कहा द्रौपदी बहुत भूखा हूं। अरे बोला पहले वो भूखे और तू ही भूखा ही आया, अरे मेरा समस्या है 10,000 का भोजन करना। बोला तेरा पात्र है कहां, दिखाओ तो सही, अंतर देखे तो एक चावल का दाना के साग का तो, ए बोला लाओ मेरे को खाया। बोला मैं तुष्ट हो गया, जगत तुष्ट, और भीम अब तुम जाओ दुर्वासा को और उनके शिष्यों को कहो कि आओ भोजन तैयार है। महाराज भोजन का है? बोला आप जाओ तो सही। अब भीम तो चला गया, उधर उधर गया तो वो जो नहा रहे जमुना में सबको डकार आ रही है, पेट भर गया है। अब कहते हैं गुरु जी भोजन का तो बोल के आए हैं, खा नहीं पाएंगे। दुर्वासा ने कहा मैंने पहले अम्बरीश महाराज का आज पहले परे को परीक्षा है, अब इसका इलाज यही है, बस लंगोटा कसो धोती ऊपर करो और भागो। 10,000 आदमी के भोजन का ऑर्डर दिया है वो कैंसिल कराना, ये तो बड़ा बड़ा झमेला हो जाएगा। नहीं भीम कहता महाराज चलो भोजन है तो युद्ध शिष्य तो भाग गए, ये खड़े रह गए। बोला पांडव आपका भोजन करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन इस वक्त पेट भरा हुआ है। वैसे भी ब्राह्मण को भोजन आशीर्वाद के लिए दिया जाता है, मैं आपको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूं कि आपका वन का सारा समय सुख से गुजरेगा। बोला आप अगर महाराज प्रसन्न हो तो एक और आशीर्वाद दे दो। बोला जो मांगो दूंगा लेकिन भोजन महाराज नहीं खा पाएंगे। बोला क्या आशीर्वाद चाहिए। बोला महाराज हमारे इस संकट के पीछे ये शकुनी जो है ना ये बहुत बड़ा दुष्ट है, इसने सब कुछ ये किया है। अब क्या है कि मेरे को ज्यादा खाने की, मेरे पेट में तो है अग्नि, कौन सी वृक अग्नि, मैं खाता हूं बहुत ज्यादा तो मेरे को सोच बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। अब एक काम करो, एक आशीर्वाद दो, खाऊं मैं और सोच जाए शकुनि। दुर्वासा ने कहा दोनों वाचन से तथास्तु, ऐसे ही होगा। भीमसेन हंसता हुआ वापस पहुंचा, बोला आ नहीं रहे खाने को। बोला महाराज वो तो सब चले गए। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीमसेन ने कहा हम तो वनवास में, कन्हैया एक काम करो, एक किलो लाल मिर्ची आप नजदीक से मथुरा से मंगा के दो, क्योंकि मथुरा के जो पंडित है ना मिर्ची ज्यादा खाते हैं, रबड़ी खाते हैं और मिर्ची खाते हैं। बोला करना क्या है? बोला आज मेरे को मिर्ची घोट के पीने का इच्छा। बोला क्यों? बोला आशीर्वाद मिला है, मिर्ची मैं पीऊंगा और शकुनी सोच में सोया होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भगवान की संतुष्टि से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक भगवान की भक्ति करना सब जीव का धर्म है, सब जीवों का धर्म है, और भगवान ने अपनी भक्ति सबके हृदय में भर के रखी है। आज कोई बनेगा, कोई इस जन्म में, कोई दूसरे, कोई किसी, कभी न कभी तो बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जो जल्दी करे वो बुद्धिमान है। और इसके बाद पृथु महाराज के वंश में आगे प्राचीन बहित नाम का एक कर्मठ राजा हुआ, जिसने इतने महान यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी पूर्व मुखी कुश घास से ढक जाए, इतने यज्ञ किए। एक दिन नारद जी आया कि ध्रुव वंश का है, ध्रुव भक्त था, ये कर्म कांड कर रहा है। नारद ने आके कहा महाराज आप पशुओं की बलि यज्ञ में दे रहे हैं, ये सारे के सारे पशु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, शरीर छूटेगा तो आपको दंड देंगे, और देखो ऊपर वो सारे पशु हैं। और ऐसे जब दिखाया नारद ने तो भयभीत होकर महाराज प्राचीन भरत कहता है महाराज ये तो मेरे पुरोहित मुझसे यज्ञ करा रहे हैं। आप और आपके पुरोहित भागवत धर्म को नहीं जानते हैं, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं आप सुन लो। ये नारद जी ने कहा प्राचीन बलित को 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेता। उनको प्राचीन बलित ने कहा था बेटा पहले तपस्या करो, तपस्या करने के बाद आके राज करके प्रजा बढ़ाना। तो 10 पुत्र ये तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर की ओर चले गए, जो उत्तर भारत में कच्छ प्रदेश में है, समुद्र के किनारे बहुत सुंदर स्थान नारायण सरोवर है, वो तो सरोवर में चले गए तपस्या करने। प्राचीन बहिष्ट को जो कथा बताई नारद ने उसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। ये हम सबकी अपनी कथा है, सबको इसको समझना चाहिए। नारद जी कहते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम था पुरंजन, उसका एक साथी था, उसका जान नाम था अज्ञात मित्र। ये पुरंजन सब लोगों में घूमता घूमता इस भारत में पृथ्वी के ऊपर आया, और इसको बहुत एक नगर दिखाई दिया नौ द्वारे वाला, और उस नगर के अंदर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, और स्त्री के पीछे एक 5 फन वाला सांप उसकी रक्षा कर रहा था, 11 उसके सेनापति और हर एक सेनापति के साथ 1000 सैनिक खड़े थे। पुरंजन ने उस स्त्री को देखा और कहा बड़ी सुंदर लग रही हो, अच्छा तुम्हारा नगर है, बहुत अच्छे सेवक और संग तुम्हारे अंग रक्षक हैं, तुम विवाह किया? बोला नहीं। बोला हमसे विवाह करोगी? हाँ क्यों नहीं करेंगे। और पुरंजन उस पुरंजनी के साथ विवाह करके उस नव द्वार वाले महान नगर में रहने लगा। तो प्राचीन भरत ने कहा महाराज ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? बोला पुरंजन जीवात्मा है, उसका अज्ञात मित्र परमात्मा है, कई जूनियों में भटक के मानव शरीर को नव द्वार वाली देही कही गई है, 5 द्वार तो मुख के पास ही पड़े हैं, 7 द्वार, 2 आंखें 2 नासिका 2 कान 1 मुख और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार, 9 द्वार देही कहते हैं इसको। इसमें पुरंजनी है बुद्धि, कौन सी बुद्धि? असती बुद्धि। और न वो स्त्री पल पल में बस वेश बदलती है, कभी पीली साड़ी तो कभी नीली साड़ी तो कभी लाल साड़ी पहनती है। बोला ये वेश बदलना क्या है? बोला कभी सतोगुण का प्रभाव है तो कभी रजोगुण का और कभी तमोगुण का बुद्धि के ऊपर प्रभाव है। बोला पांच फन वाला सर्प कौन है? बोला ये पांच प्राण है जो बुद्धि की रक्षा करते हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान। और बोला ग्यारह ये कौन है सैनिक? एक मन, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां जिसके द्वारा ये शरीर का संचालन चलता है, और असंख्य इच्छाएं हर एक की भोग की, ये उनकी सेना है। पुरंजन आत्मा बुद्धि के साथ तदात्म्य करके शरीर में रहने लगा, अपने मित्र को भूल गया और पुरंजनी के साथ मौज करता है। कभी आंख के द्वारे अच्छी अच्छी सिनेमा देखने जाए, कान के द्वारे बहुत अच्छे गान सुनने जाए, मुख के द्वारे गोलगप्पे खाने के लिए घूमने चला जाए, और नासिक का द्वारे बहुत सुगंधित इत्र को सूंघे, और ऐसे बहुत बड़ा आनंद ले रहा है। तब एक चांडवेग नाम का राजा जिसकी कन्या का नाम है जरा, उसने कहा कि महाराज मैं आपके साथ विवाह करूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, पुरंजनी मेरी पत्नी है, तुम तो बड़ी क्रूर लगती हो बुढ़िया, मैं नहीं शादी करूंगा। उसने अपने पिता को कहा मेरे शादी नहीं कर रहा है। बोला सेना देता हूं तुम्हारे को, 360 ले लो काले सैनिक बहुत भयानक है, और 360 गोरे सैनिक, जाओ पुरंजन की पुरी के ऊपर आक्रमण करो, और तेरे को एक तो देता हूं भय और एक प्रज्वर सेनापति, अब जाके आक्रमण करो। अब तो जरा ने आक्रमण पुरंजन की पुरी के ऊपर आएगा। फिर कहा महाराज क्या कह रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोला काल चांडवेग समय है और जरा बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा सबसे विवाह करना चाहता है, लेकिन कोई बुढ़ापे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बुढ़ापे की पहली निशानी कान के पास दो सफेद बाल आते हैं जो कान में कहते हैं अब तैयारी करो, अब तैयारी करो, ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम कितने होशियार हैं, 2 रुपये का काला रंग इधर लगा के और कहते हैं तू क्या करेगा हमारा, हम फिर जवान हो गए। तत्काल हम उसका उपचार करने का प्रयास करते हैं, तब तो चिक्की खाते हुए 2 दांत नीचे गिरते हैं, तब तो बुढ़ापा कहता है अब मैं आ गया हूं, तो हम तो सीधे डॉक्टर के पास जाके 32 ही नए लगा देते हैं। बुढ़ापे को हम बहुत धोखा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बुढ़ापा सबके ऊपर आना है, कोई उससे बच नहीं सकता। तो सैनिक कौन है 360? बोला 360 काले रात और 360 गोरे दिन ये शरीर को बुढ़ापे की ओर तेजी से ले जाते हैं और लड़ाई करते हैं। कान लड़ाई करता है, आंख करता है, लेकिन कान का सुनना बंद होता है, आंख का देखना बंद होता है, और फिर जबान बस चखना बंद होता है। तो आस्ते आस्ते ये सारे सैनिक पांव चलना बंद होता है, सारे सैनिक थोड़े दुर्बल पड़ जाते हैं, और पांच फर्म वाला सर्प भी सांस थोड़ा मुश्किल आने लगता है। तब भय मृत्यु का सामने खड़ा होता है, और काल ज्वर जो ज्वर है उसका पर ज्वर वो अंतिम मृत्यु के समय का बुखार आता है। और पुरंजन ने अंत समय में पुरंजनी का ध्यान करते हुए प्राण निकले तो दूसरे जन्म में पुरंजन स्त्री बनी। विदर्भ देश में वो बनी स्त्री मलियाध्वज राजा की। राजा था मलियाध्वज जोता संत साधु, और वो इसलिए उसकी स्त्री जाके बनी। तो यहां शास्त्र में बहुत जगहों पे स्त्री को माया खा गया, यहां तक के कपिल देव अपनी मां को उपदेश देते हुए कहते हैं मैंने माया के रूप में स्त्री को पैदा किया। लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं समझना कि स्त्रियां हमेशा स्त्रियां रहती हैं। पुरंजन की तरह जो आज स्त्रियां हैं पहले पुरुष थे, जो आज पुरुष हैं पहले स्त्रियां थी, इसलिए आज भी स्त्रियां ही पुरुषों को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि पहले से पुरुष थी ना, उनके दिमाग में ये पहले से अकल भरा हुआ है। नहीं नहीं, वैसे ही सब चल रहा है। तो ये नहीं है कि जो अब स्त्री वो सदा स्त्री रहेगी। तो पुरंजनी अब मलियाध्वज राजा पुरंजनी धा राजा बन गया, और ये पुरंजन जो है ये स्त्री बन गया। मलियाध्वज राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्म कर्म का कार्य करता था, और ये पुरंजनी के एक दिन जब मलयाध्वज का प्राण निकल गया तो उसके शव को पकड़ के बैठ गई। तब अज्ञात मित्र ब्राह्मण के रूप में आया, कहा कि तुम किसके लिए रो रही हो, ये कि तुम्हारा पति है तुम समझते हो, ये तुम्हारा पति है, नहीं मैं तुम्हारा अज्ञात मित्र हूं, तुम्हें जानती नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ कितने जन्म साथ चला हूं। अब पुरंजन को याद आता है, बोला पहले तुम पुरंजन थे, अब तुम स्त्री बनी हो विदर्भी, ये तुम्हारा पति मलयाध्वज ये बड़ा महात्मा है। बोला ब्राह्मण के रूप में क्यों आए, बोला ये गुरु जी का ही काम होता है, साधु संत गुरु है जो हमारे को भगवान से फिर परिचय कराते हैं, नहीं तो हम संसार में कभी पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री, कभी देवता बनते हैं, तो कभी कीट पतंग बनते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। हमारा तो काम ऐसे है जैसे ये बना हुआ है बगीचा, इसमें तो नहीं है लेकिन वो बच्चों के खेलने के लिए होती है, फिसलनी, ऊपर चढ़ के जाओ फिर फिसल के नीचे आओ, फिर ऊपर चढ़ के जाओ फिर नीचे आओ, बच्चे जैसे करते हैं ना, ऐसे हम बड़ा परिश्रम करके स्वर्ग तक जाते हैं फिर वापस फिसल के नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। जब तक कोई साधु संत महात्मा नहीं मिलके भगवान से परिचय कराता तब तक कोई संसार में भटकते रहते हैं। एक और कथा भी बताई, अब क्या है, देखा नारद ने देखा पुरंजन सोच रहा है कि मेरे बेटे आए उनको राज दे के फिर जाऊं। नारद ने कहा वैराग जब आए तभी ले लेना चाहिए, दान देने का मन हो तभी दे देना चाहिए, थोड़ी देर के बाद मन ऐसा है जो घुमा फिरा के बोलेगा अब क्या जरूरत है, ये तत्काल जब भाव आए उसी वक्त पूरा करना चाहिए, देर उसमें करनी नहीं चाहिए कभी। एक व्यक्ति जहाज में जा रहा था, मछली खाई तो उसका कांटा गले में अटक गया, और गले में कोई चीज अटके कितनी भारी पड़ती। फिर अनाउंसमेंट की कोई डॉक्टर है क्या जहाज में, एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर ने कांटा निकाला तो बोला डॉक्टर साहब आपने हमारे को बहुत संकट, आसमान में संकट था, कहीं जा भी नहीं सकता था, आपने बहुत अच्छा हमारा भला किया, आपका क्या फी देना चाहिए। उसने बोला जब कांटा तेरे गले में अटका था उस वक्त जो तुमने संकल्प किया था उसका आधा ही दे दो। बोला महाराज मैं लुट जाऊंगा, उस वक्त मैंने कहा था कांटा निकालो सब कुछ ले लो मेरे प्राण निकल रहे, लेकिन कांटा निकल गया, अभी अगर धरती पे 100 लेते हो तो यहां 200 ले लो और क्या करो, लेकिन वो पहले जो मन में आया था वो नहीं। ये एक तिरुपति चला गया एक भक्त का, भगवान वैसे तो मैं जो मिलेगा उसको आपको आधा दूंगा लेकिन मेरे को 100,000 की आवश्यकता है। गया काम किया 50,000 मिले, अपने वचन के अनुसार आधा देना था, तो मन कहता है नहीं आधा भगवान क्या करता है, उसके पास कमी है कि लक्ष्मीपति है, तो हाथ जोड़ के कहता है भगवान आप इतने होशियार हो अपना हिस्सा काट के मेरे को आधा ही दीजिए, अपना हिस्सा आपने पहले काट लिया है। ये मन कभी अच्छा काम करने नहीं दिया, आए तत्काल मेहमान का, मन का, दान का, मृत्यु का, इसका कोई मुहूर्त नहीं है, जब आए तब तत्काल कर देना चाहिए, इसमें देर की नहीं तो टाइम निकल जाएगा। सो नारद ने दूसरी कथा बताई, एक श्लोक में बोला दो पक्षी, एक पुरुष और एक स्त्री पक्षी, दो बड़े आपस में प्रेम में बैठे थे, पीछे बहेलिया था और आगे शेर खड़ा था। अब ये तो अपना मृग थे, पक्षी नहीं मृग, दोनों नाम मृग का लिया है वहां, तो मृग और मृगी बड़ा बगीचे में रमण कर रहे थे और पेड़ों के पीछे शेर खड़ा था और उनके आगे और पीछे उनके बहेलिया बाण ऐसे अनुसंधान करके खड़ा था, लेकिन वो उधर मौज कर रहे थे, सुन ऐसे कैसे कर सकते, तो पीछे से वो मार देगा, और तब तक बहेलिया ने तो एक को मार दिया हिरण को और दूसरा विलाप करने लगी, तब विलाप करने लगी तो बोले इतना रोने का इंतजार क्या करेगा, तुम्हारे पीछे भी तो मौत खड़ा है। बोले ये क्या उदाहरण क्या है, बोला ये हम संसार में भोग में घर छोड़ते नहीं है, मृत्यु आगे खड़ा है और आगे काल पीछे काल खड़ा है और ये पीछे हमारी आयु जो जा रही है दिन रात में, वो तो बाण अनुसंधान करके खड़ा है समय, और आगे मृत्यु झपट के लेने के लिए खड़ी है, और हम फिर भी कहते हैं नहीं, हमें दुनिया में सुखी रहेंगे। एक और उदाहरण कभी समझाने के लिए देती है। एक राजा थे, उसकी चार रानियां थी। एक का नाम था काया। उससे राजा इतना प्रेम करता था, जहां जाए साथ ले जाए, जो मांगे वो खिलाए पहनाए, बड़ा खुश था राजा उसके साथ। एक का नाम था कंचन। उसको देखे तब बाहर जाए, उसको देखे के बगैर सोए नहीं, उसको सदा दिल में बसा के रखे। और एक का नाम कामनी था। उसके साथ तो पर्यटन में जाए, घूमे फिरे, मौज करे। ये चौथी रानी का नाम करुणा था। उससे कभी बात भी नहीं, कभी कभी मिला भी नहीं। समय आया, राजा का प्राण संकट में पड़ गया और पलंग में पड़ा है, मृत्यु का भय लगा है। चारों रानियों चारों ओर बैठी है। राजा कहता है मुझे डर लग रहा है, सामने मुझे यमदूत दिख रहे हैं। काया तुम तो साथ चलो मेरी। काया कहती है महाराज मैं आपके साथ जा नहीं सकती, मैं कभी आपको छोड़ा नहीं, सदा तुम्हारे को साथ रखा, और अब कहती हूँ मैं साथ नहीं जा सकती हूँ। पर मैं महाराज आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी। महाराज ने कंचन की ओर देखा, कहा कंचन तुमको तो देखने के बगैर मैं बाहर नहीं गया, तुम्हारा दर्शन करके सोया, तुम्हें सदा सीने में रखा, दिल में बसाया, तुम तो चलो। उसने तो तत्काल कह दिया महाराज आपके प्राण जाते ही मैं तो दूसरे की पटरानी बन जाऊंगी, मैं तो पत्नी ही, पति मेरा दूसरा हो जाएगा, मैं तो चला गया। जिसको अपना समझ के दिल में बसाया वो कहती है मेरा दूसरा पति हो जाएगा, तो कामिनी तुम तो चलोगी ना। कहती है महाराज ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आगे चलना मेरा मुश्किल है, मुझे भी संसार में काम है। अब तो राजा उठ के कहता है मैं ठगा गया, पूरी आयु समाप्त हो रही है, इन तीनों रानियों को प्रसन्न करने पूरा रहा और अब कोई चलने को तैयार नहीं। तब करुणा सामने आके कहती है महाराज ये प्रश्न मुझसे तो पूछा नहीं आपने। बोला कौन से मुंह से पूछूं, जे आपसे तो कभी बात तक मैंने नहीं की। बोला नहीं पूछते हो तो महाराज मैं आपको कहती हूँ, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। अब राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा कि महारानी मैं बड़ा अपराधी हूं, जो साथ चलने वाला है उसको भुला दिया, जो नहीं चलने वाले हैं उनको पकड़ के बैठा हूं। ए दुनिया वालों सुन लो, आप सब ऐसे राजा हो, ये काया तुम्हारा शरीर है जिसको सारा दिन लेके घुमाते हो, जो चाहे वो खिलाते हो, जो चाहे वो पिलाते हो, चाहे वो पहनाते हो, अंत समय जब जाने का समय आएगा शरीर तो यही पड़ा होगा, चार अर्थी उठा के जाएंगे, ये आज तक किसी के साथ गया नहीं, ये कंचन धन है जिसको दिल में बसाते हैं, देख के खुश रहते हैं, अंत समय हमारे जाते ही उसका पति दूसरा हो जाएगा, उसका मालिक दूसरा हो जाएगा, वो तो किसी के साथ गया नहीं है। ये काम नहीं, रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु बांधव शमशान तक साथ जाएंगे और घड़ी को देखेंगे कि ये कब आग लगाए तो हम चले यहां से, कोई वहां रुकने वाला नहीं होता है। ये जो करुणा, ये परमात्मा है जो सदा हमारे साथ रहता है, जो साथ रहता है उसको कभी याद नहीं करते हैं, और जो कभी साथ नहीं रहने वाले हैं उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्राचीन भरित को जब ये सुनाया, तत्काल प्राचीन भरित ने अपने मंत्रियों को बुला के कहा जब मेरे बेटे आए तो राज तिलक दे देना और हम जा रहे हैं। नारद जैसा गुरु है तो काम उसका पक्का है, वो कच्चा काम नहीं करता है। प्राचीन भरित तपस्या करने के लिए चले गए और अब प्रचेता उनकी कथा आती है। प्रचेता जा रहे थे नारायण सरोवर, रास्ते में देखा तो एक सरोवर से बहुत सुंदर वाद्य का आवाज और गाने का आवाज आ रहा है। खड़े हो गए तो अंदर से भगवान शंकर बाहर निकल के आ गए। भगवान शंकर ने कहा कि आपने मुझे बुलाया नहीं, मेरी पूजा की नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रसन्न हुआ हूं। क्यों? बोला जो मेरी पूजा करता है उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन आप वासुदेव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, अभी शुरू नहीं किए। संस्कृत में शब्द है वासुदेव, भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, इसलिए मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, आपको मैं रुद्र गीत सुनाता हूं, और इस गीत गाने से तत्काल आप भगवान वासुदेव की प्रसन्नता प्राप्त कर लोगे। अब ये रुद्र संप्रदाय के दीक्षित भक्त हो गए, इनको सीधा भगवान शंकर ने मंत्र भी दिया, उपदेश भी दिया, और ये गए सीधे नारायण सरोवर के अंदर, जल में बैठ के उन्होंने तपस्या की, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन किया। भगवान विष्णु ने कहा एक तो आपने पिता की आज्ञा पालन की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, दूसरा आप 10 भाई एक मत हो, आपके अंदर कोई भिन्न विचार नहीं है, समान धर्म, आपका धर्म एक जैसा है, आप में कोई भेदभाव नहीं, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। अब आप वापस जाओ, आपके विवाह का मैंने व्यवस्था कर ली है और आप जाके राज करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और प्रचेता यहां से वापस आ रहे हैं तो देखे पिताजी तो है नहीं, राज सारे में जंगल बढ़ गया है। तो बड़ा क्रोध आ गया, प्रचेताओं को क्रोध आया, योग अग्नि से सारा वन प्रदेश जलाने लगे। उस वक्त वनस्पतियों का राजा चंद्रमा नीचे उतर के आया, कहा महाराज आपके राज की प्रजा है ये वन, इसको जलाओ मत। और मैंने यहां वनस्पतियों की कन्या की पुत्री, इसको आपको मैं विवाह के देता हूं, आप इस मरीषा को ले लीजिए। तो चंद्रमा ने ये विवाह का व्यवस्था किया। फिर उदाहरण वही आता है, शंकर भगवान से दीक्षा लेकर आए, विष्णु का दर्शन करके आए, लेकिन फिर भी क्रोध आ गया। चंद्रमा ने विवाह किया। और अब थोड़ा सा पीछे जाकर याद कीजिए, दक्ष को शंकर जी ने कौन सा सर लगाया? बकरे का। अब दक्ष को आई लज्जा के बकरे के सर से मैं कैसे जीऊंगा। वो एक अगमर्षण नाम की विंध्या पर्वत में जगाए वहां तपस्या करने के लिए चला गया। और वहां से दोबारा ये 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तब इसका नाम फिर दक्ष हुआ। तो दक्ष 10 प्रचेताओं का पुत्र दोबारा पैदा हुआ, भगवान का दर्शन करके आया और भगवान ने फिर इसको प्रजापति बनाया। वो 6 स्कंद में फिर हम इसका वर्णन आगे सुनेंगे। तो 10 प्रजापति और 10 प्रचेताओं को दक्ष पुत्र पैदा हुआ और फिर इन्होंने राज किया। नारद इनके पास आके इनको उपदेश दिया। पर एक जन्म माता पिता से होता है, वो तो शरीर का जन्म है, दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु भगवान के नाम के मंत्र देके और आपको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तब दूसरा जन्म होता है। और जब वेद पाठ पढ़ लेते हैं, शास्त्र भागवत पढ़ लेते हैं, तब तीसरा जन्म होता है विप्र। पहले तो सामान्य जन्म तो शुक्र सबका है, लेकिन दूसरा जन्म जब तक नहीं है तब तक उसका, पहले जमाने में ये स्कूल पद्धति नहीं थी, हर बालक गुरु के आश्रम में जाता था और वहां जाके ही जनेऊ डाला और वेद पढ़ना शुरू हो गया। तो ये परंपरा गुरु करने वाला चक्कर था नहीं कि मुझे गुरु करना है, ये गुरु वाला तो चक्कर अभी शुरू हो गया। पहले बच्चा जाता ही सीधा गुरु के पास पढ़ने था, फिर और कहीं गुरु करने की आवश्यकता तो नहीं थी, जो जहां जाता था वही उसका गुरु था गुरुकुल के अंदर। जब से ये पद्धति खराब हो गई तब से ये व्यवसाय हो गया। तो प्रचेता भी समय आने के ऊपर चले गए, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष का राज भी चला। यह चौथा स्कंद पूर्ण आवृत्ति के ऊपर पहुंचता है। पांचवें स्कंद का आरंभ होता है स्वयं मनु का दूसरा पुत्र प्रियव्रत, जो ज्येष्ठ पुत्र है। अभी तक छोटे भाई के उतानपाद के ध्रुव के वंश में प्रचेताओं के बाद दक्ष की 60 पुत्रियों का वंश भी समाप्त हो गया। तब तक तो नारद जी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और संकल्प किया था अब तो मैं सन्यासी हूं। पिता स्वयं वो मनु आए, कहा प्रियव्रत अब राज करने वाला कोई नहीं है, मुझे भी तपस्या करने जाना है, आप राज करो। बोला मुझे राजकाज में नहीं फंसना है। तो स्वयं मनु अपने पिता ब्रह्मा जी को लाए, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़े और चढ़कर आए और गंध मादन पर्वत की द्रोणी के ऊपर प्रकाश हो गया और प्रियव्रत को ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा भगवान सबका नियंता है, मैं ब्रह्मा, ये आपका पिता स्वयं मनु, ये सारे देवता, ये ऐसे घूमते हैं जैसे अनाज के खलियान के अंदर बंधे हुए बैल घूमते हैं रस्सी नाक में डाली हुई, हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है, जैसे भगवान चलाता है ऐसे चलते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म रक्षा करना है, बताओ कि तुम अकेले भगवत धाम जाओ ये अच्छा है कि ये पूरा राज भगवत धाम जाए ये अच्छा है। बोला पूरा राज जाए अच्छा है। बोला अपने गुरु से पूछ लो, नारद सामने खड़ा है। अब नारद तो नारद का पिता है ब्रह्मा जी, तो भाई सब जाए तो अच्छा है। बोला सब जाए अच्छा है तो आपको राज करना चाहिए और ग्रस्त में प्रवेश करना चाहिए, ग्रस्त तो बहुत बड़ा दुर्ग है। अरे एक आदमी का कोई एक शत्रु होता है तो अपनी रक्षा के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करता है, रात को निकलता नहीं है, अंग रक्षक रखता है, यहां तो छे पांच इंद्रियां शत्रु हैं, हम छे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे शत्रुओं के बीच में घिरे हुए हैं। ये ग्रस्त आश्रम बहुत बड़ा दुर्ग है जो हमको पतन से बताता है। वैसे पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचाए, पत्नी का अर्थ ये। और ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अच्छा हुआ द्रौपदी आपने इस अश्वत्थामा की हत्या करने से पाप से हमको बचाया, आपने पत्नी के धर्म का पालन किया। और पति उसको कहता है जो पत्नी का पालन पोषण भरण पोषण और उसके संतानों का सब करे, इसको इनकी परिभाषा ये है। सो आपको विवाह करना चाहिए। बोला इसके अलावा और भी कोई दुर्ग है क्या? बोला दूसरा दुर्ग भगवान के चरण कमल है, जो एक बार उसका आश्रय ले लेता है तो उसको कोई फिर चिंता नहीं रह जाती है, फिर उसका रक्षक भगवान हो जाता है। वो भी समय आने के ऊपर भाग्यशाली वो दूसरे दुर्ग में जाके रह जाते हैं। लेकिन अब आपको राज करना चाहिए। तो प्रियव्रत ने कहा वेद का आचार्य ब्रह्मा है, स्मृति का आचार्य मनु है, और दोनों वेद और स्मृति आदेश दे रहे हैं, तो प्रियव्रत महाराज राजा बने। और पांचजन्य प्रजापति की पुत्री पांचजन्य के साथ उसका विवाह हुआ और महाराज प्रियव्रत को 10-10 पुत्र हुए। और महाराज प्रियव्रत क्योंकि नारद आश्रम में तपस्या करके परिपक्व अवस्था में आए थे, काल के ऊपर विजय प्राप्त करती। बोला रात रात हो जाती, काम करना लोग बंद कर देते हैं। सूर्य देव का रथ चलता है मंदरा पर्वत के ऊपर और इन्होंने अपने रथ के अंदर प्रकाश दे के रात को दिन में बदल दिया, रात दिन हो गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये रात भी वनस्पतियों को रस चंद्रमा से मिलता है तब रसीली होती है, और ये आदमी भी रात को सोते हैं तब सुबह काम के योग्य बनते हैं, इसलिए अब आप ऐसे मत करो। काल के ऊपर विजय प्राप्त की, 10 पुत्रों को प्राप्त किया, उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बने और 10 पुत्रों में 3 तो बड़े तपस्वी हुए और सबसे बड़ा था उसको इस जो इलावर्त जो जम्बू द्वीप है इसका राज अपने, बाकी 7 पुत्र थे, 3 तो साधु हो गए, बाकी 7 को 7 द्वीपों का राज दे दिया, तो उसमें से जम्बू द्वीप का राज दिया अपने बेटे अग्निधर को। तो अग्निधर महाराज के विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने अप्सरा को भेजा, पूर्वचिति को, उससे बड़े प्रभावित होकर उसके साथ विवाह किया। और विवाह के बाद उसको बहुत प्रताप, एक पुत्र नाभि पैदा हुआ, अनेक पुत्र हुए लेकिन नाभि उनमें से बड़ा ब्राह्मण भक्त था। समय आने के ऊपर महाराज नाभि राजा बने। जब महाराज नाभि राजा बने तो ब्राह्मणों ने उनके लिए यज्ञ किया, यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए, नाभि तो हाथ जोड़ के खड़े थे। ब्राह्मणों ने कहा भगवान आप जैसा पुत्र हमारा ये यजमान चाहता है। तो भगवान हंसते कहते हैं ब्राह्मण आपका वच्य का वचन ब्राह्मण के मुख का असत्य हो नहीं सकता है, आपने कह दिया है तो नाभि के घर में मैं पुत्र के रूप में प्रकट हूंगा। तो अब नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। तो भगवान ऋषभ देव जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हो उसको ऋषभ कहते हैं, और जो श्रेष्ठ है उसको ऋषभ कहते हैं। तो ऋषभ देव भगवान का अवतार नाभि के घर में हुआ, प्रियव्रत के वंश में। और महाराज ऋषभ देव बहुत बड़े बचपन से प्रतापी थे, पिता ने ऋषभ देव को राजा बनाया, तपस्या करने चले गए। महाराज ऋषभ देव के समय में इंद्र के पद के ऊपर भगवान का अवतार यज्ञ था, आकुटी का पुत्र और रुचि प्रजापति का पुत्र, और 100 यज्ञ किए अश्वमेध। महाराज यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने बरसात करना बंद कर दिया भारतवर्ष में, तो महाराज ऋषभदेव ने अपने योग बल से वर्षा कर दी। तो इंद्र अपनी बेटी जयंती को लेकर आया और ऋषभ देव के साथ विवाह कराया। तो ऋषभ देव का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ और ऋषभ देव को 100 पुत्र प्राप्त हुए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम है महाराज भरत। ये महाराज भरत इतने महान प्रतापी हैं कि इनके नाम से हमारे इस भूमंडल का नाम भारत वर्ष हो गया, जिसका पुराना नाम इलावर्त वर्ष था। जब भारत महाराज इस पृथ्वी के राजा हुए तब इसका नाम भारत वर्ष हुआ। तो भारत वर्ष बहुत प्राचीन नाम है, लेकिन ऋषभ देव के पुत्र भारत के बाद में ये नाम हुआ है। ये सतयुग का तपस्वी पुत्र है महाराज भरत, ऋषभ देव का बड़ा योगी है। और दूसरा भरत त्रेता युग में हमारे पास राम का भाई और प्रेमी भक्त महाराज भरत हुए हैं। और द्वापर में भी एक बड़ा अद्भुत भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ है, जो भरद्वाज ऋषि को प्रसन्न करके एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण वंश चलाया। महाराज भरत के वंश में, ब्राह्मण वंश में द्रोणाचार्य आदि भरद्वाज पुत्र हुए और क्षत्रिय वंश भी भरद्वाज से आगे चला है। पांडव इनका उत्पत्ति सारी हुई है। सो अब महाराज ऋषभदेव राज करने लगे, बड़ा अद्भुत उनका राज है। सिद्धियां उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ऋषभदेव ने कहा, नहीं मुझे रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले, इस मन के ऊपर भरोसा नहीं है, ये रिद्धि सिद्धि कल मन को भटका देंगे। हमको सिखाने के लिए, वो तो भगवान के अवतार थे। एक दिन अपने पुत्रों को लेकर, 100 पुत्रों को ब्रह्मावर्त, वैसे ब्रह्मावर्त कोई तो कानपुर में बिट्ठूर को कहते हैं कि ये ब्रह्मावर्त है, इस जगह पे धरती का केंद्र है, ये तो गंगा जमुना के बीच वाला ये ब्रह्मावर्त कहलाता है। ऋषियों के बीच में ऋषभदेव का जो उपदेश भरत महाराज को है, और ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, इसलिए हम सब उनके पुत्र हैं, ये पूरे भारत वर्ष के लिए उपदेश है। और पहला पूछा बेटों को, बच्चे आपके इस जन्म का आपका उद्देश्य क्या है? बोला, बड़े होंगे खुश हो जाएंगे, सुख भोगेंगे। बोला, कौन सा सुख? शरीर का सुख? ये तो कुत्ते बिल्ले बे सुअर को भी उपलब्ध है। ये जो इंद्रियों का सुख है, जो शरीर का सुख है, ये तो कुत्ते बिल्ले सुअर गोबरेलों को भी है, उपलब्ध है। मेरा बेटा, तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्रो, दिव्य तपस्या करो। ब्रह्म सुख्यम अनंतम, आत्मा के अनंत सुख की प्राप्ति करो। मानव जन्म इंद्रियों के पीछे तुच्छ सुख के भागने के लिए नहीं है, ये तो अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए है। और फिर कहते हैं कि ये महात्मा बड़े प्रशांत चित्त होते हैं, ये सबसे समान भाव वाले होते हैं मंत। इनका संग मिल जाए तो सौभाग्य से अपना जन्म सफल हो जाता है। और फिर ऋषभदेव कहते हैं कि उसको पिता होने का अधिकार, पहले कहा गुरु होने का अधिकार नहीं है। जो अपने शिष्य को काल के मुंह से बचा के भगवान के चरणों में नहीं लगा सकता है, उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है। जो पिता अपने पुत्र को धर्म के रास्ते में चलाकर भगवत राज प्राप्ति नहीं करा सकता, पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। पति को पत्नी का ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, अगर उसको धर्म के मार्ग पे नहीं चला सकता है। और राजा को राजा बनने का अधिकार नहीं है, अगर प्रजा का धर्म के मार्ग के ऊपर भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं बता सकता है। और फिर ऋषभदेव कहते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं ब्राह्मणों की सेवा से। बच्चों, ब्राह्मणों की अच्छी तरह से सेवा करना। भगवान कहते हैं, मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो हम एक कथा सुन रहे थे महात्माओं के मुख से। जयपुर का राजा दूसरा मानसिंह, वो ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर यज्ञ कराता था, और यज्ञ के अंदर बहुत रबड़ी अच्छी दूध, मैं 50 किलो दूध में से 10 किलो दूध बच जाए, उसके अंदर केसर पिस्ता बादाम ये सब डाल के रबड़ी करके यज्ञ में लक्ष्मी नारायण को स्वाहा करता था। तो रोज ये यज्ञ हो ही रहा था। एक दिन पंडितों को रोज रबड़ी डाले यज्ञ में स्वाहा में, उसकी सुगंध आए तो मन में खा के खाने को तो मिलती नहीं है। एक दिन पंडितों का मन विचारों का फाड़ा भटक गया, भटक गया तो क्या किया, थोड़ी सी तो डाली सुहा में, बाकी रख के पतल के ऊपर सब पंडित ने खा लिया। रात को महाराज सोया है, स्वप्न में लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हो गए। कहा आज आपके यज्ञ से मैं बहुत बड़ा संतुष्ट हूं, ऐसा यज्ञ रोज होना चाहिए। महाराज उठ के दूसरे दिन सीधे आए यज्ञ भूमि में। अब ये ब्राह्मण तो बोला आज तक तो महाराज आए नहीं, आए ही इनको पता लग गया किसी जो गुप्तचर ने बताया क्या। और महाराज ने आते ही पूछा कि कल आपने यज्ञ कौन सी विधि से करा, आप तो सब थर थर कांप रहे हैं महाराज, क्षमा कर देना महाराज गलती हो गई। नहीं नहीं बोलो कैसे कल यज्ञ किया था महाराज, अब आपको क्या बताए, अभी तक तो अच्छी तरह से कर रहे थे, कल हमारा मन दुष्ट हमको उस रबड़ी खाने की तरफ ले गया, हमने तो थोड़ा सा रबड़ी का प्रसाद डाला यज्ञ में, बाकी पतलों में खा लिया। महाराज बोलते कल का यज्ञ भगवान विष्णु को बहुत पसंद आया, ये विधि से अब रोज यज्ञ करने का। बोला इस विधि से योद्ध रोज यज्ञ करना है जब तक मैं जीवित हूं, अभी जितनी रबड़ी बनती इसे डबल रबड़ी बना के भेजेंगे। आधा तो पहले भगवान को भोग लगाना, बाकी आप महाराज खाओ, क्योंकि भगवान को यही यज्ञ पसंद आया, अभी तक ये वो पसंद नहीं आया। तो ऋषभदेव महाराज कहते हैं अपने पुत्रों को कैसे ऐसे भगवान की प्रसन्नता इस बात में। उसके बाद नौ पुत्र महाराज, ये दूसरा एक सिद्धांत है कि ऐसा नहीं है कि वकील का बेटा वकील होके डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, ऐसा नहीं है। जो पढ़ेगा वही बनेगा, जो जिसकी योग्यता होगी वो बनेगा। अब सौ पुत्रों में से नौ तो बने साधु सन्यासी नव योगेंद्र, हरि कवि अंतरक्ष पलायन प्रबोध कार भजन, ये नवे स्कंद में आएंगे, ये नव योगेंद्र साधु बने। और नौ ये हो गए, दस बने नौ नौ इक्यासी बने कर्मकांडी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण बने इक्यासी, कितने हो गए 90। और 10 बने बड़े शासक क्षत्रिय शासक। तो अब एक पिता के पुत्र कुछ साधु कुछ ब्राह्मण कुछ क्षत्रिय, इसका मतलब जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार जो कार्य करता है उसको वही माना जाना चाहिए। ऐसे नहीं है भाई बेटा ब्राह्मण का है लेकिन काम ब्राह्मण का नहीं करता है, व्यापार कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं बन गया। किसी आपातकाल में ब्राह्मण को जरूरत पड़े तो एक स्तर नीचे क्षत्रिय हो जाता है, वो भी आपातकाल धर्म है, सामान्य धर्म नहीं है। सो जो भी हो आगे महाराज ऋषभदेव चले गए दक्षिण भारत में और वहां जाके तपस्या की। वो अजगर वृत्ति से रहने लगे, कोई आए तो खाए नहीं आए तो नहीं खाए, और आग पत्थर में मुंह में पत्थर रख लिया और उनके मल से चारों ओर सुगंध आने लगी, इतने तपस्वी थे। और अंत में वन में बाघ लगी, आग लगी और उस आग के कारण शरीर उनका वही भस्म हो गया, उनको शरीर का भी पता नहीं लगा। फिर ऐसे लिखा है कि वहां के राजा अहरण था, अहरण राजा था, उसने ऋषभदेव का नकल आचरण का नकल किया और तब से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। ऐसे जैन धर्म के प्रारंभ ऋषभदेव के पीछे से हुआ, इसका ऐसे वर्णन मिलता है। और आगे अब महाराज भरत बड़े महान राजा हुए, बड़े यज्ञ किए, अब तो इन भरत के यज्ञों का और इनके नाम से ये भारतवर्ष हो गया। अभी बड़े से बड़ा समय तक राज प्रियव्रत ने किया, प्रियव्रत राज करके वापस नारद के आश्रम में चले गए और अग्निधर तो अभी तक चले गए पितृलोक में, उस अप्सरा के साथ दूसरे जन्म में आगे जाके उनका भगवत धाम की प्राप्ति हुई। महाराज नाभि तो इसी जन्म में भगवान के धाम चले गए, ऋषभदेव तो भगवान के अवतार ही थे। अब महाराज भरत ने अपने पुत्रों को राज दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे जिसमें सालंग्राम गंगा है, जहां से सालंग्राम आते हैं, वहां जाके तपस्या करने लगे। सालंग्राम की पूजा करें, गंगटकी में स्नान करें। और एक दिन की बात है, एक गर्भवती हिरण को देखा जो नदी में पानी पीने के लिए आई थी और पीछे शेर धारा, और भय के मारे हिरण ने छलांग लगाई नदी के दूसरे तट के गिरते ही उनका गर्भपात हुआ, हिरण का प्राण निकल गया। उस बच्चे के ऊपर दया करके घर में महाराज भरत लेकर आ गए, आश्रम में बच्चे को लाके रखा, दया की दृष्टि थी। अब हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति होने लगी कि हिरण का बच्चा आगे पीछे घूमे, अब भगवान के भजन से ज्यादा बच्चे के खान पान का ध्यान करे। एक दिन बच्चा शाम तक आया नहीं, ढूंढने गए बच्चा मिला नहीं, और पहाड़ की किसी कंदरा से नीचे हिरण का ध्यान करते हुए गिरे, प्राण निकले और दूसरे जन्म में हिरण के शरीर में प्रवेश किया, और फिर हिरण के शरीर में जन्म लेने के बाद भी वापस पुलह आश्रम में, पुलह ऋषि के आश्रम में गंडकी के तट के ऊपर आके शांत चित्त अपने भजन में लगे रहे, उसी गंगा में प्रवेश किया, और तीसरे जन्म में वो महाराज भरत एक अंगिरस ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया। और प्रायः कहते हैं जो ये उत्तर काशी है वहां गंगा के तट के ऊपर घाट है, अभी भी जड़ भरत घाट है, तो इस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। और अब ये जब तीसरे जन्म में जड़ भरत हुए हैं, तब ये ब्राह्मण के घर में जन्म लिया लेकिन जड़ जैसे रहने लगे, न कुछ लेना कुछ न कुछ देना, कुछ शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, पिताजी ने सिखाने का प्रयास किया कुछ सीखने को तैयार नहीं थे, उनको संसार से कुछ लेना देना ही नहीं था। पिताजी के देहांत के बाद बाकी भाइयों ने देखा कि करता कुछ नहीं है, इसको खिलाएं क्या, जला हुआ कुछ दे देते थे तो खा लेता था, गैया चराने के लिए भेज देते थे गैया चराने के लिए, बाहर बैठा था। एक दिन डाकुओं को काली देवी को बलि चढ़ानी थी और नर बलि के लिए उनको ये तकड़ा मोटा नजर आ गया, पकड़ के ले गए चले गए, और ये भी चुपचाप चला गया। उन्होंने खिलाया खाया, उन्होंने नहलाया नहाया, और काली देवी के सामने बलि के लिए जैसे ले गए, काली की मूर्ति से साक्षात दुर्गा प्रकट होके उस अपने भक्त डाकू के हाथ से तलवार लेके सब डाकुओं का विनाश कर दिया, अपने भगवान के भक्त जड़ भरत का रक्षा कर लिया। तो देवी देवता भी अपने भगवान के भक्त की रक्षा पहले मानते हैं, अपने भक्त की रक्षा में उतना इनका आसक्ति नहीं होती है। और एक दिन की बात है, संध सुवेर का राजा महाराज रघुगण पालकी में चढ़ के अपने रानियों के साथ पूरे समाज के साथ गंगा सागर सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके उठाने वाला एक बीमार हो गया, तो इसको मोटा तकड़ा देखा तो कहा कि आप उठाओ, कहार बनो, पालकी उठाओ, और ये पालकी उठा के चलने लगे तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन आगे चुनटी देखें तो कूद पड़े, पांव इधर का उधर रखें तो ऊपर महाराज को धक्का आए, बोलता ठीक क्यों नहीं चलते हैं, तीन कहे हम तो महाराज ठीक चल रहे हैं, ये जो अभी आया है इसको पता नहीं है ये ऊपर नीचे होता है। तब महाराज को गुस्सा आ गया, कहते तुम पतले हो, दुबले हो, थक गए हो, चल नहीं पाते हो, तुम्हें पता नहीं है ऊपर आदमी जिंदा है, तुम मुर्दा उठा के जा रहे हो, कूद रहे हो, तुमको मैं दंड दे के अभी तेरे जैसे पागलों को बहुत को सीधा कर सकता हूं। अभी तक तो जड़ भरत किसी से बोले नहीं थे, लेकिन आज को उनके हृदय में करुणा आई और महाराज रघुगण को कहा कि आप किसको कह रहे हो थक गया, किसको कह रहे हो मोटा, किसको कह रहे हो पतला, किसको कह रहे हो, ये तो आप शरीर के बारे में कह रहे हैं, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूं, और आत्मा ना थकता है ना मोटा होता है ना पतला होता है, अब किससे बात कर रहे हैं और किस चीज के राजा हैं, कौन है आप। महाराज ने जो ये आत्मज्ञान की बातें सुनी एकदम कूद के नीचे उतरे और प्रणाम में सब प्रणाम करके नीचे का, महाराज आप हो कौन, आप ऐसा उपदेश आपके मुख से निकल रहा है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बर्तन जब चढ़ाते हैं आग के ऊपर तो पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होता है, तो ऐसे आपके कंधे के ऊपर ये भार है, फिर आपको भार कैसे नहीं लगेगा। तो जड़ भरत कहता है महाराज आप सुनो, नीचे पृथ्वी उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, पृथ्वी का बने हुए शरीर पृथ्वी का बना हुआ, इसके ऊपर ये पालकी आपकी पेड़ से बनी वो भी पृथ्वी से निकला, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है वो भी मिट्टी है, अपने आप को राजा मानता है, और हम जो नीचे उठा के चल रहे हैं उनको प्रजा मानता है, ये तो मिट्टी का सारा खेल है महाराज, इसमें आत्मा का कहां प्रसंग आता है, तो फिर ये दुख सुख कौन फेंकता है, शरीर तो यहां रह जाता है। बोला शरीर यहां रह जाता है लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और दूषित चित्त का, ये तो हमारी आत्मा के साथ ही जाता है। मन हमारा वही है जो पहली बार हमारा जन्म हुआ है, उसको कोटि जन्म हो गए, करोड़ जन्म हो गए, लेकिन हमारा मन हमारे साथ है। मन बुद्धि और अहंकार और दूषित चित्त का सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है। जैसे रात को सोए हुए हमारा शरीर तो चारपाई पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहीं पहाड़ नजर आ जाता है, कहीं समुद्र नजर आ जाता है। तो ऐसे उस वक्त जैसे शरीर से, तो जब पाप इस शरीर से करते हैं, ये शरीर तो यही अग्नि हो, इसको तो यही हम शमशान में जाके अग्नि को अर्पण कर देते हैं, तो दंड कौन भोगता है? बोले दंड कौन भोगता है? वो सूक्ष्म शरीर मन के अंदर सारे उसके पापों का चिट्ठा पड़ा होता है, उस मन से यमराज उसके पापों के अनुसार उसको दंड देता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। तो ये बहुत बड़ा उपदेश दिया। और फिर जड़ भरत को कहा, जड़ भरत से महाराज रघुगण ने कहा कि हमें कुछ उपदेश दीजिए। बोला महाराज, तपस्या से, दान से, यज्ञ से कोई उपदेश नहीं मिलता है। उपदेश के लिए तो महात्माओं के चरण की रज को धारण करोगे, तभी ये रास्ता आपको हाथ आएगा। ये जो महत पद पद रज अभिषेकम, ये जो ये शरीर के ऊपर तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक असल में ये गोपी चंदन है। गोपियां भगवान की परम भागवत है, उनके चरणों की रज लगाते हैं। ऐसे जो जो सफेद तिलक अयोध्या से आता है वो संतों की चरण रज है। वो मलियाकोट में एक चंद्र सफेद, दक्षिण में सफेद चंद्र का तिलक लगाते हैं, वो तो गरुड़ जी बेकुंठ से लेके आए थे उस चंदन को, और वहां रखा है जो चंदन लगाते हैं। तो ये तिलक लगाने का मतलब है भगवान के प्रेमी भक्तों के चरण की रज। तो ये गोपी चंदन, बहुत सी कथाएं आती है, एक कथा ये भी आती है कि नारद जी जा रहे थे द्वारका, तो ब्रज में गोपियों ने कहा, कहां जा रहे हो ऋषि? बोला द्वारका। बोला क्यों? बोला कृष्ण। बोला कृष्ण तो यही है, गोपियों को कभी कृष्ण का अभाव नहीं हुआ ब्रज में, वो तो रोज प्रतिदिन कृष्ण को ही याद, जब याद करती थी आ जाते थे। अब नारद यही खड़ा है। बोला आप कहते गो कहां है, द्वारका कहां गए? यही है ना। बोला बुलाओ देखे। तो गोपियों ने कहा कन्हैया कन्हैया, तो पहले तो आ जाते थे एक क्षण में, आज दो मिनट के बाद आए। तो बोले देर क्यों लगाई? बोला नारद को ये विश्वास था कि मैं द्वारका चला गया, इसलिए थोड़ा आने में देर हो गई। अब नारद को आश्चर्य लगा, नारद द्वारका गया तो देखा कि भगवान बैठे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं सर में बहुत दर्द हो रहा है, अरे क्या करना चाहिए? बोला कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो उस रज को मेरे माथे पे लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद ने कोई महात्मा बड़ा एक तपस्वी जटाओं में बैठा था, जाके जगाया, बोला समाधि काय के लिए लगाइए? बोला भगवान के दर्शन के लिए। बोला उसी भगवान के सर में दर्द है, ला तेरे चरण की धूली। बोला नारद आप मुझे नरक में डालोगे? आज मेरी हजारों सालों की तपस्या के ऊपर पानी फेरने को आए, जाओ यहां से, मेरे चरण की रज भगवान के सर के ऊपर। अरे भगवान के चरण की रज हमारे सर के ऊपर लगे, उल्टी गंगा नहीं बहेगी। अब एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं, बड़ा वेद पाठ कर रहे हैं। नारद ने कहा महाराज पूजा बंद करो, आपका चरण लाओ था, मेरे को धूल चाहिए। बोला क्यों? बोला भगवान के सर में दूर दर्द हो रहा है द्वारका में। बोला नहीं मिलेगी, अपराधी मैं बन जाऊंगा, नर्क में जाना पड़ेगा। ये गोपियों के पास आए, गोपियों ने कहा नारद ऐसे चिंता हो गए, घूम रहे हो चिंता में, क्या परेशानी क्या है? बोला कन्हैया को बहुत बड़ा दर्द था। बोला क्या चाहिए? बोला चरणों की रज। बोला जल्दी करो, जितनी चाहिए वो ले लो। अरे बावरी गोपी तुम्हें डर नहीं लग रहा है, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाए, कुंभी पाप में जाए, सारी उम्र के लिए चली जाए, 100 जन्म के लिए चली जाए, कन्हैया के दर्द खत्म होना चाहिए। वो मिट्टी जो गोपियों के चरणों की नारद ले गया, उस मिट्टी से जो अभिषेक हुआ, उस मिट्टी के अभिषेक से गोपी तालाब बना, और उसके अंदर जो चरण रज है गोपियों की, वो गोपी चंदन होके आज सबके माथे के ऊपर सुसर्जित हो रहा है। और एक और कथा भी एक समय की है कि भगवान ने मथुरा से दूर चले गए, जब द्वारका में नगरी बना ली तो भगवान ने कहा मथुरा तो दूर नहीं थी, अब तो हजारों मेल दूर चले आए। तो एक दिन अपनी योग माया से सब गोपियों को एक महान महल में बुला लिया। सुबह गोपियां उठी, दरवाजा नहीं मिल रहा था, कहा द्वारका द्वारका, द्वार कहाँ है द्वार कहाँ है? तो उस नगर का नाम ही द्वारका हो गया, जिसका पुराना नाम कुशस्थली है और अनर्थ देश है, लेकिन गोपियों ने द्वारका नाम रख दिया। फिर गोपियों के साथ भगवान का गोपियों ने वहां अभिषेक किया और वहां रास विलास करने का विचार भी किया, इसलिए गोपी तालाब के पास एक रास मंडप है, लेकिन रास वृंदावन से बाहर नहीं हो सकती। रास की तैयारी हुई, लेकिन राजा रानी और गोपियों ने कहा इस क्षेत्र में रास नहीं हो सकता है, फिर गोपियों ने और भगवान ने उस तालाब में स्नान किया तो जो अंगराग लगा हुआ था गोपियों के सारे अंग के ऊपर और कन्हैया का जो अभिषेक किया उससे वो गोपी तालाब बना और उसके अंदर की मिट्टी के ऊपर आज भी मिट्टी के ऊपर चक्र का शंख का गदा का बड़े चिन्ह निकलते हैं और पूरा चिन्ह अंदर बाहर तक होता है। तो ये दिव्य भगवान के प्रेमी भक्तों की चरण का रज है जो माथे में लगाने में ये शरीर मंदिर है, भगवान इसके अंदर रहते हैं। ये तो मंदिर हमारे पीछे तो हमने बनाया ईंट पत्थर का, इसके अंदर ठाकुर जी हमने बनाए, उसके अंदर जाने का नियम है, जूता उतार के जाना है, नहा के जाना है, साफ कपड़े पहन के जाना है, लेकिन ये शरीर तो भगवान के बनाया, इसके अंदर बैठे भी भगवान स्वयं है, इसका कोई नियम नहीं है, कब खाना क्या खाना जो आए अंदर डालना, कोई पवित्रता नहीं है। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसके अंदर भगवान रहते हैं, ये शिखर है हमारा मस्तक और ये तिलक लगा देते हैं और ये पुरुषों की ध्वजा है चुटिया, ये ध्वजा ऊपर फड़कती रहती है, तो इसका बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसकी जरूरत भी है और ये तिलक निरंतर लगाना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। ये तो चरण रज के बगैर महाराज रघुगण भगवान के प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती है, तुम्हारे तप यज्ञ दान तीर्थ से नहीं मिलेगी। और फिर कहा कि आप तो सिंध सुवीर देश के राजा हो, मैं भरत महाराज हूं जिसके नाम से ये पूरी पृथ्वी का नाम मां भरत हुआ। अब तो महाराज राहुगण छोटा न हो गया, पांव पड़ गया, कहा गुरु जी अब उपदेश दीजिए, तो भवाटी का उपदेश दिया है कि ये संसार कैसा है, बोला कोई आदमी जैसे वन के अंदर चला जाए और फिर मार्ग भूल जाए, और वन के अंदर पशुओं के चलने से बहुत से मार्ग बनते हैं, एक से दूसरा मार्ग, दूसरे से तीसरा मार्ग, और पशुओं वाले मार्ग जो हैं वो कभी राजमार्ग तक पहुंचाते नहीं है, अंदर ही आदमी फंस जाता है। एक कुआं दिखाई दे दिया और कुएं के अंदर देखा तो अंधा कुआं था, एक अजगर था और ऊपर एक लता लटक रही थी और उसमें माखी का छत्ता था, ये लटक के नीचे ढूंढने लगा और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, बड़ा परेशान हुआ संसार के अंदर, अब इसके लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया, ये संसार ऐसा जंगल है, इसमें पशुओं की ऐसे बहुत से लोग जो न धर्म न शास्त्र है न परंपरा है, इतने पंथ चला रखे हैं, ये पशु के मार्ग है, इसमें जो चला गया वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं बाहर जा नहीं सकता। राजमार्ग भक्ति का है, ये राजमार्ग है, और कोई भगवान का प्यारा हमारे को इस मार्ग के ऊपर खड़ा कर दे, फिर आंखें बंद भागते जाओ तो कभी न गिरेंगे और न फिसलेंगे और सीधे जाके भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो राजमार्ग को छोड़ के वन के अंदर चंदन के व्यापारी की तरह जाते हैं कि महंगा सौदा सस्ता सौदा लाएंगे, महंगा बेचेंगे, लेकिन अंदर सब फंस जाते हैं इस दुनिया में आकर। एक महात्मा अपने एक कथा बता रहा था, ग्वालियर के पास में करहा गांव है, कोई वहां कोई संत रहते थे, वहां से निकले और नूरा गांव जाना था, नूरापुर जाना था, तो रात को जंगल में भटक गए, वो पशुओं के मार्ग में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अचानक एक किसान मिला, बोला नूरापुर जाना है, बोला नूरापुर नहीं अब चोरापुर जा रहे हैं, आके आगे मोरिना वाला रास्ता है, ये महाराज आपकी ये खट ये आपका झोला भी और लोटा भी और लंगोट भी लूट जाएंगे, आप कहां भूल गए हो, ये रास्ता वहां नहीं जाएगा, नूरापुर पीछे रह गया, अब आप मेरे पीछे आओ। ले आके राजमार्ग के ऊपर खड़ा किया, बोला ये सड़क देखो सामने रोशनी आ रही है, वो है नूरापुर, नहीं तो चूड़ापुर हो जाएगा। तो तब वो महात्मा कहता है मुझे ये समझ में आया कि जो महाराज भरत शिक्षा दे रहे हैं, ये संसार में इतने पंथ लोगों ने बना रखे हैं, ये पशुओं वाले पंथों में चले गए तो कभी रास्ता मिलेगा नहीं। जब कोई भगवान का प्राण भक्त नारद जैसा, कोई भगवान का परम भागवत पुरुष उंगली पकड़ के राजमार्ग के ऊपर खड़ा कर देगा तो फिर भगवान के धाम जा पाएंगे। और यहाँ अब पांच अध्यायों में भूगोल खगोल का वर्णन है और दो अध्यायों में नरकों का वर्णन है, तो हम सिर्फ भूगोल के अंदर भारतवर्ष का वर्णन करेंगे, बाकी तो वैसे जिस द्वीप में हम रहते हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप, और ऐसे और द्वीप है उनके चारों ओर से, कहीं तो गन्ने का जूस है, कहीं घी है, कहीं दूध का सागर, और जिस द्वीप में हम रहते हैं इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र। प्राय हम लोग हमसे कहते हैं हमको ये विश्वास नहीं आता है कि खीर का सागर कैसे होगा, दूध का सागर होगा, दही का सागर होगा, गन्ने के रस का सागर होगा। तो हम उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई नमक का सागर होता है क्या? होता क्या? ये तो हमने देखा है, मुंबई में देखते हैं जाके, कपड़ा है पूरा, समुद्री पट्टी है भारत की। तो हम पूछते हैं भाई इसमें नमक किसने डाला? सरकार ने डाला है, किसी आदमी ने डाला है, सेठ ने डाला है? सेठ तो इसके नमक बना के बेच रहे हैं। तो जो नमक पानी में डाल सकता है क्या वो चीनी नहीं डाल सकता क्या? आपने तो डाली नहीं है, तो किसी और ने डाली है। इतना नमक जो डाल सकता है वो चीनी नहीं डाल सकता क्या? तो फिर आप क्यों नहीं विश्वास करते हो? नमक के समुद्र के ऊपर विश्वास है तो फिर चीनी के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? घी का क्यों नहीं होना चाहिए? खीर सागर का तो कब से आ रहा है, भगवान सोते ही खीर सागर में। ये दूसरी बात है कि भगवान शंकर जी कहां रहते हैं? कैलाश में। और पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। कहां रह रहे हैं शंकर जी? ससुराल में रहे के नहीं रह रहे? घर जमाई है कि नहीं? अब लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? खीर सागर से। और भगवान विष्णु कहां से हुए? खीर सागर में। तो अभी सारे ही अपने ससुराल में है। तो अभी तो एक आदमी जा रहा था, हमने कहा भाई तुम किसको प्रणाम कर रहे हो, किसका मंदिर है? भाई भगवान भोलेनाथ का है? नहीं नहीं, देवी दुर्गा नहीं। भाई कृष्ण मंदिर है क्या? नहीं। तो फिर माता क्यों देख रहे हो? मेरे हमारे ससुराल का घर है, यहाँ बीवी टीवी सब कुछ यहीं से मिला है, हम तो यही माता देखते थे, हमारी पूजा यही पूरी होती है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे
रामा,
हरे रामा,
राम
राम,
हरे हरे। तो जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है और सब वर्षों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। और 9 वर्ष में 8 वर्ष सूक्ष्म है जो दिखते नहीं है। इन 8 वर्षों को भौम स्वर्ग बोलते हैं। भागवत में 3 स्वर्गों का वर्णन है। एक स्वर्ग लोक जिसमें इंद्र आदि देवता रहते हैं, उसका नाम स्वर्ग है। और जो स्वर्ग से वापस लौटते हैं वो 10,000 साल तक भौम स्वर्ग में रहते हैं। 8 वर्षों को पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग माना जाता है, वो सूक्ष्म है। और तीसरे स्वर्ग को कहते हैं बिल्व स्वर्ग। बिल का मतलब है बिल, जैसे चूहा बनाता है। धरती के नीचे सूतल लोक जहां बलि महाराज रह रहे हैं उसका वैभव इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा है। तो बिल्व स्वर्ग नीचे हैं जहां नागलोक असुर ये सब रहते हैं। और भूम 8 वर्षों में, बीच में वर्ष है इलावर्त वर्ष जिसमें शंकर और पार्वती रहते हैं, कोई पुरुष नहीं है। एक बार कुछ ऋषि आ गए, पार्वती जी नहा रही थी तो उनको लज्जा आई, शंकर को कहा अब यहां कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। शंकर जी ने कहा आज के बाद कोई पुरुष आएगा तो यहां अपने आप स्त्री बन जाएगा, आप चिंता मत करो। तो आज इलावर्त वर्ष में मच्छर है मछली नहीं है, शेर सॉरी मछली है मच्छर नहीं है। ऐसे कैसे पता लगेगा? एक जगह 7-8 मच्छर मरे पड़े थे तो आपस में वैज्ञानिक बड़ा खोज कर रहे थे इनमें मच्छर कौन सा है, मछली कौन सी है, क्योंकि मछली से जो है वो तो मलेरिया होती है। तो एक गांव का आदमी बड़ा था, बोला क्यों भाई इतना टाइम लगा रहे हो, कैसे परेशानी क्या है? बोला ये 7 मरे पड़े इनमें मच्छर कौन है, मछली कौन सी? बोले इसमें कौन सी परेशानी, देखो ये बोतल के ऊपर मरे हुए हैं ये सारे मच्छर हैं और ये जो आईने के ऊपर मरी है ये मछली, आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कौन कहां मरा है उसे पता लग जाए। हरे कृष्णा। इसलिए इलावर्त वर्ष की बात कह रहे हैं कि आगे 9वें स्कंद में चंद्र वंश का वर्णन आएगा। तो सूर्य वंश का पहला राजकुमार वैवस्वत मनु का पुत्र सद्मन्यु इलावर्त वर्ष चला गया, घोड़े के ऊपर चढ़ गए, घोड़ा घोड़ी हो गया और सुदामा ने लड़की हो गया। और उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुद्ध घूमता हुआ वहां आया और बुद्ध ने उसके साथ विवाह करला और किया और प्रियावर्त नाम का और क्या क्या नाम यदुवंश का जिसको उर्वशी के साथ विवाह हुआ था पुनर्वा पुनर्वा की उत्पत्ति इलावर्त वर्ष में सत्यमुनि बनी हुई लड़की और बुद्ध के साथ हुई वहां से चंद्रवंश शुरू होता है तो ये वर्ष वंश के इस वर्ष के अलावा एक हरि वर्ष है जिसमें भगवान नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद महाराज आज भी कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज पहले वो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ये प्रहलाद महाराज के शब्द हैं विश्वस्य पूरे विश्व का कल्याण हो खलु प्रसदंती जो खल है वो भी शांत हो जाए भगवान की सब भक्ति करें अद्भुत प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं एक हरि वर्ष में ये है हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की पूजा करते हैं किम पुरुष वर्ष में भगवान रामचंद्र की पूजा हनुमान जी कर रहे हैं ये इस धरती के ऊपर आज बैठे अभी भी कर रहे हैं और हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र के अवतार का उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं था लेकिन हम सबको शिक्षा देना था अगर ग्रस्त में प्रवेश करना है पत्नी का पानी ग्रहण करना है तो सात समुद्र पार जाना चाहे रावण से लड़ना पड़े तो भी उसकी सुरक्षा करने का भार उठाना चाहिए उसमें संकट आएंगे उससे डरना नहीं चाहिए अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो अच्छा है साधु बाबा जी बन जाओ इस झंझट में पड़ो ही मत ये हनुमान जी की शिक्षा है कि रामचंद्र के दो ये उद्देश्य है शिक्षा देने के लिए ग्रस्त में जाना है तो पालन पोषण करने की जवाबदारी उठानी है छोड़ना किसी हालत में नहीं है तो इसके बाद भारत वर्ष एक ही वर्ष दिखता है इसका आराध्य देव है नारायण नर नारायण और बद्री का आश्रम और इसका नारद जी नित्य निरंतर सेवक हैं और इस वर्ष में वर्ण आश्रम की व्यवस्था है और देवता इस वर्ष की इतनी महिमा गाते हैं देवता कहते हैं हमने कोई पुण्य किया तब तो हमको देवता का पद मिला अगर कुछ पुण्य बचे हो तो धरती के ऊपर मानव का जन्म दे देना और भारत वर्ष में देना क्योंकि भारत वर्ष में भगवान को पाना भक्तों का संग करना बहुत सरलता से मिल जाता है देवताओं के लिए दुर्लभ है देवता कहते हैं नजत्र गायंती नजत्र वेकुंठ कथा सुधारपुरा जहां भगवान गोविंद की कथा की अमृतमयी नदी नहीं बह गंगा नहीं बहती न साधवो यदा श्रिया जहाँ साधु उस कथा में बैठ के रसास्वादन नहीं करते न यज्ञ इस चमत्कार और जहाँ हरि कथा हरि कीर्तन का यज्ञ न हो महोत्सव हो नहीं जन्माष्टमी का सुरापी लोकम होकर देवताओं का लोक भी है हमको नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए इसका मतलब है कि देवता कहते हैं जहाँ कथा होती है जहाँ कीर्तन होता है जहाँ हरि भक्त होते हैं वो स्वर्ग से तो लाख गुना महान है उस वो शंभु वो स्वर्ग की तुलना उससे करना ही अपराध है और भारत वर्ष में वर्ण आश्रम धर्म भारत वर्ष के उपरांत तारामंडल का वर्णन है ध्रुव लोक का वर्णन है और फिर नरकों का वर्णन है 28 नरकों का वर्णन है या पांचवा स्कंद जब पूरा होता है तो छठे स्कंद में परीक्षित महाराज वैष्णव है कहता है नरकों में बड़ा संकट होता है बड़ा दुख होता है नरकों से बचने के लिए महाराज साधन क्या है नरकों से लोगों को कैसे बचाया जाए और उस वक्त परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज उत्तर देते हैं कि जैसे बीमारी छोटी है तो छोटी दवा बड़ी बीमारी है तो बड़ी दवा अगर पाप बड़ा है तो बड़ा प्राश्चित छोटा पाप है तो छोटा प्राश्चित करना चाहिए वेदों में प्राश्चित तो लिखा ही है कर्म कांड में पहले किसी के हाथ से बिल्ली मरती थी सोने की बिल्ली बना के देनी पड़ती थी ये प्राश्चित हुआ करता था तो परीक्षित महाराज बड़े विद्वान समझदार बुद्धिमान थे उन्होंने कहा महाराज प्राश्चित तो करे फिर वापस जाके पाप करे तो जैसे ईसाई लोग कहते हैं आओ इतवार के दिन आओ सब पाप अपना हजरत ईसा को दे के जाओ लेकिन वापस जाके पाप करे तो फिर और महाराज ने उदाहरण क्या दिया, हाथी जाके गंगा में नहा के साफ होके बाहर आता है और फिर एकदम जाके मिट्टी अपने ऊपर झाड़ देता है, तो इस प्राश्चित का लाभ क्या हुआ? ये इससे पाप से नहीं बच सकता। तो सुखदेव महाराज ने क्या तपस्या करे, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर पाप करेगा नहीं, अविद्या नाश हो जाएगी तो फिर नरक नहीं भोगना पड़ेगा। सुखदेव महाराज को परीक्षित जी कहते सब ये सब तपस्या नहीं कर सकते, सब ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते, सबका कल्याण कैसे हो? और फिर ज्ञान तपस्या तत्काल पाप से तो रोकती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति अंदर होती है वो नहीं रोकती है। जब भी पाप करने की कोई वस्तु सामने आ गई तो एकदम सब साधन समाप्त हो जाते हैं, सब जब तब भूल जाता है आदमी। एक राजा था, कहा करता था सामान्य व्यक्ति, अरे तुम लोग इतना भी इन्हें आज्ञा का पालन नहीं करते, तुमसे तो अच्छी मेरी बिल्ली है। और फिर बिल्ली को बुला के उसके ऊपर सर के ऊपर दिया रख के बोलता था चुप करके बैठ जाओ, और बिल्ली बैठी रहती थी। बोला देखो बिल्ली नहीं हिलती है और तुम आज्ञा का पालन नहीं करते हो। सब लोग परेशान हो गए कि हमको बिल्ली के बराबर भी नहीं समझता है। एक बड़ा बुजुर्ग था मंत्री, उसने कहा महाराज आपकी बिल्ली के संयम की परीक्षा कर लेंगे। और दूसरे दिन कुछ चूहे लाया झोली के अंदर, बोला महाराज अब आपकी बिल्ली को बोलो कि बैठ जाए, दीवा रख दो उसके ऊपर, दिया रख दिया और उसने झोली से चूहा निकाला, बिल्ली कूदी चूहे के पीछे और दिया कहाँ गिरा। बोला महाराज ये बिल्ली तब तक शांत है जब तक चूहे सामने नहीं है, ये हमारा वाला भी साधन भजन तब तक ठीक है जब तक कोई विषय वस्तु सामने नहीं है, आ गई अच्छा खासा धर्मात्मा होता है और किसी का पड़ा हुआ पैसा देखता है तो मन करता है तो ये तो कोई देख थोड़ी लाया होगा, तो ये एकदम मन बेईमान हो जाता है। बहुत मुश्किल है ये काम, इतना आसान काम नहीं। सो तब एकदम सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित भक्त है इसको ऐसी कथा बतानी चाहिए। बोला मैंने अगस्त ऋषि से ये कथा बताई है, सुनी है, जब वो भगवान को हाथ लगा के ये कथा कह रहे थे कि कन्याकुमज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, सदग्रस्ती था, नारायण शिला सालग्राम की पूजा करता था, अच्छी पत्नी के साथ विवाह हुआ, जप तप सब करता था, यज्ञ दान आदि सब करता था। बताना क्या है कि यज्ञ दान तप से पाप के करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है, ये सिद्धांत स्थापित हो रहा है। एक दिन वो अजामिल वन में फल फूल लेने गया, किसी दुष्ट को वैश्या से आलिंगन करते देखा, उसके मन ने एक नजर देखा और कहा नहीं देखना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं लकड़ी यज्ञ के लिए लेने आया हूं, मैं फूल सालग्राम के लिए तुलसी लेने आया हूं, नहीं देखने में क्या है। और उसके मन के झगड़े ने उसके अंदर जो पाप की कुछ प्रवृत्तियां पड़ी थी वो बाहर निकल आई। अजामिल ने घर तो गया लेकिन घर का त्याग किया, वैश्या के साथ विवाह कर लिया, उस विश्वेशा से पुत्र उत्पन्न किए, अपनी सुंदर ब्राह्मण पत्नी का परित्याग कर दिया, चोर चोरी डाका सब बेईमानियां करने लगा। पहला सिद्धांत, अभी एक और बात सिद्धांत आपको बताने चाहिए थे। पांचवें स्कंध में जड़ भरत की कथा में एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि पुनर्जन्म होता है। भरत हिरण के जन्म में गए फिर जड़ भरत हुए, इसका मतलब दूसरा जन्म होता है। दूसरा सिद्धांत यह स्थापित होता है कि की हुई भक्ति नाश नहीं होती, जो महाराज भरत ने भक्ति की वो हिरण के जन्म में भी याद रही और जड़ भरत के जन्म में तो वो भगवान के धाम ही चले गए। और भरत महाराज ने जिस हिरण से आसक्ति हो गई थी वो हिरण भी महाराज रघुगण बने, इसलिए उसके प्रति वात्सल्य भाव था, इसलिए जड़ भरत ने यह उपदेश महाराज रघुगण को दिया। तो हिरण का भी उद्धार किया और अपना भी उद्धार किया। अब क्या स्थापित यहां हो रहा है सिद्धांत, यज्ञ तप दान आदि करने से प्रवृत्त पाप की प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती है। बाहर से तो आदमी ठीक होता है, जब भी मौका मिलता है तो पतन संभव है, लेकिन अब कहते हैं एक तो संतों ने कृपा की, उसकी पहले की हुई सालंग राम की भक्ति थी। और एक दिन अजामिल के घर कुछ महात्मा आए, अजामिल तो था नहीं घर में, महात्माओं को वैशा ने तो कह दिया हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, बालक हुआ है, महाराज हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो महात्माओं ने कहा सूतक नहीं, तुम्हारे घर में ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी बोतल पड़ी है, ये कचरा पड़ा है, हम कुछ लेने नहीं आए, देने आए। ये सब साधु साधु संत महात्मा लेने नहीं आते हैं, देने आते हैं, ये विशेषता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो मिश्रा जी ने कहा न्यूयॉर्क में, स्वामी जी ये धोती, ये चोटी, ये हाथ से खाना, ये सब परित्याग कर दो, अमेरिका में आए हो तो बेल्ट पहनो, टाई बांधो, कोट पहनो, कांटे से खाओ, चमचे से खाओ। प्रभुपाद ने कहा आप ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, वैसे भारत से जो यहाँ आते हैं या तो विद्या प्राणे के लिए आते हैं या धन कमाने के लिए आते हैं, इसलिए उनको ऐसा बनना पड़ता है जैसे अमेरिका वाले, न तो मैं इस उम्र में विद्या प्राणे आया हूँ न ही धन कमाने आया हूँ, मैं इनको सुख देने आया हूँ, मैं इनको सुख देने आया हूँ, इसलिए मैं क्यों बदलूं? अगर इनको सुख लेना है तो इनको बदलना पड़ेगा। महाराज ने धोती नहीं छोड़ी और सबको धोती पहनाया, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना नहीं छोड़ा कुछ। और उनको कहा कि वैसे भी आप ये मान लो ये साड़ी और धोती ये केवल भारत का वेशभूषा है, ये बात नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत की वेशभूषा है। आप देवी देवता को इसी वेश में देखेंगे, भगवान के परिक्रम को इसी वेश में देखेंगे, और इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा संदेश है त्याग और वैराग का। न धोती में जेब होती है न साड़ी में जेब होती है, इसका मतलब हमारे साथ दुनिया से कुछ नहीं जाएगा। ये दो वस्त्र हमारे को हमेशा त्याग और वैराग की शिक्षा देते थे कि कहीं कुछ जाने वाला हमारे साथ नहीं है। साड़ी से, एक साड़ी से स्त्री अपना अंग ढकती है, एक धोती से पुरुष अपना अंग ढक सकता है, सिलाई की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, और कोई जेब नहीं, कफन में भी जेब नहीं होता है, जो कपड़ सब के ऊपर कपड़ा होता है उसमें जेब नहीं होता है, और मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जाता है वो भी जेब वाला कपड़ा नहीं पहनता है। इसका मतलब भगवत प्राप्ति के लिए ये यूनिफॉर्म है, जैसे पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म में होता है तो उसमें बल होता है, सैनिक अपनी यूनिफॉर्म में होता है तो उसको बल होता है, डॉक्टर अपनी यूनिफॉर्म है तो उसको बल है, ऐसे भक्त अपनी यूनिफॉर्म में है तो उसको अपना भक्ति का चेतना बनी रहती है और पाप करने में सावधान होता है। लोग कहेंगे महाराज हो गए ऐसे कर रहे हो, तो कभी नहीं करेगा, ये सावधानी के लिए बहुत अति आवश्यक है। ये वेशभूषा माताओं को फिर भी प्रणाम है, अभी तक कहीं साड़ी बची हुई है, लेकिन हमारे पुरुषों की धोतियां कौन लेके, हमको आज तक समझ में नहीं आता किसने उतार ली धोती। धन्यवाद है कर्नल जी को, ऐसी कथा में धोती पहन के आते हैं, धन्यवाद है इनको, नहीं तो ये गई कहाँ आपके। एक दिन तो इसकी होली मनानी चाहिए, जब तक ये वेशभूषा नहीं जाएगी तब तक गुलामी हमारे दिमाग से जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। गौरव के साथ अपने वस्त्र पहनने में बहुत बड़ा आपको क्या होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। ये गौरव भी अच्छा है, ये अभिमान नहीं है। अपने वस्त्रों का सम्मान करो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो। वैसे भी पहले पगड़ी बांधते थे हमारे बड़े, सर के रक्षा के लिए, अभी तुम हेलमेट पहने हुए घूम रहे हो, काम तो वही कर रहे हो, उल्टा सर के ऊपर टोपा डाल के घूम रहे हो, अच्छा खासा कपड़े का होता था, ये कहाँ प्लास्टिक सर के ऊपर डालिए, और ये जितने पैंट वैंट है ये सारे प्लास्टिक के बने हुए और उल्टे हैं, हमारे कपड़े ऊपर से पहनते हैं ये नीचे से उल्टा ऐसे पहनने वाला, सारा ही काम उल्टा, और हम समझते हैं आज, और आजकल तो हमको आश्चर्य लगता है फटे हुए 10 जगह से कपड़े हैं, वो फैशन वाले वो सबसे महंगे मिलते, पहले गरीब फटे पहनते थे, अब अच्छे घर के फटे हुए कपड़े पहनते, क्या दुर्दशा हुई है। ऐसा भी कहीं मिलता है कि बुरा हाल है कि नहीं है, हरे कृष्णा फटे कपड़ों का कहां से क्या हो क्या रहा है। पहले बेचारा कोई गरीब था वो भी फटा होता था, उसके ऊपर कुछ चेता चिपड़ी लगा के काम बंद करके आता था, अब तो खींच खींच के तोड़ के घूम रहे हैं। क्या संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। सो अजामिल के घर में वो ब्राह्मण का एक काम करना, ब्राह्मणी हम देने आए हैं, ये देने वाली बात बहुत। प्रभुपाद जी जब हम इंग्लैंड में गए तो पत्रकारों ने कहा महाराज आप क्या यहाँ क्या देने आए, आपके पास है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा आपने 200-250 साल तक राज किया, सब कुछ भारत से ले आए, एक चीज भूल गए, मैं आपके घर में होम डिलीवरी देने आया हूँ। लोकनाथ महाराज कहते हैं परम पूज्य के होम डिलीवरी देने आया हूँ, आप ये बहुत बड़ा हमारे पास जो असली धन भगवत भक्ति है वो भूल के आए थे, मैं आपके घर में होम डिलीवरी देने आया हूँ, अब आप ले लो ये। तो साधु संत देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। जो अल्प ले और अधिक दे वो साधु, जो जितना दे उतना ले वो व्यवसायी, जो कुछ भी न दे और सब लूट ले वो बदमाश, जो दे कुछ नहीं और सब कुछ लूट ले वो बदमाश, जितना दे उतना ले व्यापारी, जो अल्प ले और अधिक दे वो साधु। सो का एक काम करना, ये जो आपका छोटा बालक है ना इसका नाम नारायण रख देना। ये संतों की युक्ति है कि इसको कहें कि भगवान का नाम लो, ये तो पहले से पंडित सब जानता है लेगा नहीं। जैसे हम कहते हैं अभी ये महीना आ रहा है ना दिसंबर का, ये गीता जयंती का महीना है, पूरे विश्व के अंदर नहीं तो करोड़ों के संख्या में गीता का वितरण करते हैं हमारे भक्त लोग संस्था के। भारत में किसी को गीता बोले तो हमारी दादी के पास थी, हाँ दादी के पास थी लेकिन इसमें लिखा क्या है पता है, खोली है कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन कहेंगे हमारे पास पढ़ी पढ़ी है, तो खोल के पढ़ेगा कौन। तो बात क्या कर रहे थे, जानते हैं साधु संत कि इसको कहेंगे नाम लो तो ये पहले से जानता है, लेकिन अच्छा वैद्य होता है ना कड़वी तो कोई दवाई होती है ना पुड़िया, तो कहता है इसको मधु में मिला के पीना, पुड़िया कड़वी है और मधु मीठी है तो उसके साथ पी जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसको रोग बहुत भारी लगा हुआ है, पुत्र मोह के मधु में नारायण का नाम मिला के दे देते हैं। अब नारायण का नाम अजामिल घर आया, बोला आज तो हमने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, नारायण पानी पिलाओ, नारायण मेरा चप्पल ले आओ, नारायण मेरा भोजन लाओ। इतना नारायण जपा कि सारे पाप धुल गए। अब बच्चा सामने है, मृत्यु का समय आया है, तीन जमदूत सामने आके खड़े हो गए, जमदूत गले में डाल दिया और जमदूतों का वर्णन है लाल लाल आंखें थी, ऐसे खड़े खड़े लाल बाल थे और हाथ में डंडे लिए हुए थे और फांस था। सोचा कहां देखूं जाके जमदूत, फिर मेरे को समझ में आया कि आजकल सारे लड़के ऐसे बालों को पता नहीं क्या लगाते हैं जमदूतों की तरह, ऐसे खड़े खड़े बाल और फिर भी कहीं लाल कहीं पीले रंग लगा के जमदूत का नकल करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, कलर भी करते हैं, कलर भी भूला कलर वो पूरे बाल बनाए, अरे गधे बन जाओ इंसान बने हो, अच्छा खासा काला बाल है फिर भूरा यहाँ है और पीला यहाँ है और लाल यहाँ है, तो छत्रपुर्ग बन जाओ, सात कलर के रंग नहीं लगा सकते हो, ये सब पापों से मुक्त हो गया। यम का फांस निकाल दिया और अजामिल बोलना चाहते थे, तब तक तो विष्णु दूत भी चले गए, अब तो अजामिल कहा कि देखो तो ऐसे अनजाने में नारायण का नाम बेटे का समझ के ले लिया तो भी मृत्यु के पास ही से बच गया, अब तो सचमुच नारायण का नाम जपूंगा, सीधा चला गया हरिद्वार नारायण का नाम जपने के लिए। और दूसरी तरफ यमदूत ने जाके फांस है का बोला महाराज आपकी नौकरी हमसे नहीं करनी, आज तक किसी ने हमको नहीं रोका, आज पहली बार हम गए थे उस अजामिल पापी को लेने जो पाप का पुंज था, लेकिन वहां चार हाथ वाले विष्णु दूत आ गए, नारायण नाम यमराज नाचने लगे, बोला यम लोक में आज तक नारायण का नाम किसने नहीं लिया, आज इनको नारायण का नाम कैसे। जिसके मुख से हरि का नाम सुनो, जिसके माथे के ऊपर ऊर्ध पूर्व तिलक हो, जिसके गले में तुलसी माला हो, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, उसके पास मत जाना। और जो मूर्ख नाम से विमुख है और हरी कथा में रुचि नहीं रखता है वो सब हमारे पास पकड़ के लाया। जैसे भगवान को भोग बगैर तुलसी के लगता है, तुलसी के बगैर भोग नहीं लगता है। तो ये गले में तुलसी माला का मतलब है, अब ये हमारा, हम भगवान के भोगे बन गए। तो ये भगवान के भोगे बनने के लिए तुलसी माला और ये तिलक भगवान के भक्तों के चरणों की रज है, ये लगा हुआ है तो यमदूत कभी नहीं आएंगे। ब्रजवासी कभी सुनाता है एक बाबा हमको कि एक आदमी ब्रज के पास आते हुए रास्ते में मर गया और ऊपर से कौवे ने जाते हुए उसके ऊपर ऐसे विष्टा कर दी और विष्टा उसकी ललाट के ऊपर गिरी। यमदूत से 100 क्विंटल रुई पड़ी होगी, 1000 क्विंटल रुई पड़ी होगी, एक दिया सलाई जलाएंगे तो सब जल जाएंगे कि नहीं जलेंगे। एक 10 साल से कमरा बंद पड़ा हो अंधकार में, एक टार्च जलाओगे रोशनी होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही अनंत कोटि पाप एक नारायण नाम के उच्चारण से जल के भस्म हो जाते हैं। शर्त यह है कि उसके बाद कोई पाप न करे। अंत समय मृत्यु से पहले गोविंद का नाम निकल गया, फिर कोई पाप नहीं हुआ तो सब पाप नाश हो गए। लेकिन नाम लेके फिर पाप करे ये तो अपराध हो गया। अजामिल का उद्धार नाम अभास से हो गया। इसके बाद दक्ष की कथा आती है। वो दक्ष प्रजेताओं का पुत्र, अब फिर दक्ष प्रजापति क्षत्रिय बना। ये संसार में खड्डा है और एक ही माया रूपी स्त्री है जिसको पकड़ लेती है, वो छूट नहीं सकता है। उनके मन में आया हम तो साधु संत बनेंगे, हमें संसार में जाना नहीं है। ये पता लगा दक्ष को, दक्ष को क्रोध आया। फिर 1000 पुत्र छबला सब वो गए, उनको नारद ने यही मंत्र पढ़ाया, वो साधु हो गए। दक्ष को आया क्रोध, कहा नारद तुम मेरे बच्चों को अभी तो भोग नहीं किया है, इनको भक्त बना दिया, मैं तुझे शराब देता हूँ, कहीं एक जगह 3 दिन तुम रह नहीं पाओगे। नारद बड़ा खुश हो गया, बड़ा अच्छा किया, नहीं तो आश्रम बनाना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती, अब जान छूट गई, हम तो घूमते रहेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम नाराज मत हो, अब ऐसे करो तुम पुत्रियां पैदा करो, और पुत्रियों को तो नारद आएगा नहीं प्रवचन करने, आएगा तो बदनाम हो जाएगा। तो 60 पुत्रियां फिर दक्ष ने की और उन पुत्रियों का विवाह देखा अनदेखा कर दिया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, अदृश्य हो गए। वो पंडित महाराज समझ गए कि इस वक्त शिष्य अहंकार में आसन पे बैठा है ना, गद्दी के ऊपर, तो इसके इसको थोड़ा सा अहंकार हो गया, अदृश्य हो गया। ये पता लगा बलि महाराज के लोगों को, जो असुरों को, असुर ने देखा इनके पास गुरु नहीं है, अभी गुरु नाराज हो गया है, अब तो उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब तो देवता बड़े दुखी हो गए। ब्रह्मा जी से पूछा हम क्या करें, बड़ा बड़ा तुमने गलत काम किया है, अपने गुरु का तुमने अवहेलना की है, क्षमा याचना मांगो। लेकिन गुरु अदृश्य हो गया, बोला जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक तुष्टा का बेटा विश्वरूप को आप गुरु करो, उसके पास बहुत बड़ी विद्या नारायण कवच की है, उस विद्या को लेने के बाद आप असुरों से पराजित नहीं होंगे। अब ये देव को 3 शर्तें, और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की विद्या दी, और नारायण कवच का पूरा एक एक मंत्र से शरीर के ऊपर धारण करके अंग न्यास कर न्यास करके सारे शरीर को, अभी ये जो मंत्र हम तिलक लगाते हैं ना, नारायण नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु, ये भी कवच है, तिलक रक्षा करने वाला है। बड़े से बड़े पापी को तिलक लगा हो तो पाप से मुक्त हो जाए अंत गति में, ऐसा उदाहरण कई मिलता है शास्त्रों में। तो नारायण कवच की विद्या दी। एक दिन देखता है इंद्र विश्वरूप यज्ञ कराते हुए, एक आहुति तो इंद्र को दे रहा है, एक अपने नाने को दे रहा है, नाना उसका असुर था ननिहाल। ये देखो दो ननिहाल ठीक नहीं थी तो 2 समस्याएं भागवत में आती है। तो विवाह में पहले हम आपको कोई आपकी डाली काटेगा वापस आ जाएगी, लेकिन ब्रह्म हत्या के रूप में आपसे जो रस गिरेगा वो ब्रह्म हत्या का रस माना जाएगा, वो भोगे नहीं रहेगा। पृथ्वी ने कहा इंद्र मैं आपका 1/4 हिस्सा लेती हूँ पाप का, तो जहां बंजर होगी धरती वो ब्रह्म हत्या के कारण है, लेकिन खड्डे खोदे हो जाएंगे तो अपने आप भर जाएंगे। पानी ने कहा इंद्र 1/4 हिस्सा मैं आपके पाप का ले रहा हूं। बोला पाप अगर 2 दिन का पानी पुराना हो गया तो उसमें ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाती है, उसमें बुद्ध बुद्ध होने। इसलिए हमारे पुराने लोग जो मटका भरते थे ना वो रोज धो के भरते थे, भले पीने का आधा मटका हो वो पानी बर्तन धोने में डालते थे, पीने वाला रोज नया भरते थे। और पुराने आदमी बेटे को ले गए थे पुरोहित बनाने के लिए और गर्दन काट दिया। उसने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र उच्चारने वाले पंडित को पता नहीं क्या हुआ, उसका उच्चारण गलत हुआ कि इंद्र को मारे वो पैदा हुए, उसके बजाय उसने उच्चारण किया इंद्र जिसका शत्रु हो वो पैदा हुआ। यज्ञ कुंड के अंदर से एक बहुत बड़ा असुर निकला और उसने सब दिशाओं को ढक दिया, तो उसका नाम हो गया वृत्तासुर। और वृत्तासुर के लाल लाल बाल है, बाहर यज्ञ कुंड से निकला है, उसने अपने सारे असुरों को इकट्ठा किया और ऐसा आक्रमण किया इंद्र के ऊपर कि इंद्र के सिपाही, इंद्र के सारे देवता भागने लगे। बहुत बड़ा भारी संग्राम हुआ और इंद्र भयभीत होने लगा, भगवान विष्णु के पास गया, अब क्या करूं। बोलने लगे ऋषि दधीची, कहा वैसे भी भगवान ने भेजा है पर उपकार का कार्य है, अपने शरीर के ऊपर दही लगाया, चीनी लगाई, गाय ने शरीर को सारा चाटा और फिर अस्थियां इंद्र को प्राप्त हुई जिससे वज्र बना। ये जहाँ नैमिषारण्य से 1 किलोमीटर पास में एक मिश्र तीर्थ, वहाँ दधीची ऋषि का ऐसे मूर्ति बनाया है, गाय चाट रही है और पास में जो तीर्थ है उसका नाम है मिश्रित कुंड। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, फिर दधीची ऋषि का मृत्यु तो हो गया ना, तो सारे तीर्थों का आवाहन करके उस कुंड में स्नान किया है। कोई गया है मिश्रित कुंड का दर्शन करने? तो ये हमारे भक्त तो घूमते रहते हैं जब जाते हैं बसों में, तब हम एक बार दर्शन करने गए थे जहां दधीची ऋषि का स्थान है। अब इंद्र ने वज्र बना लिया। इसके ऊपर हमको एक ध्यान में आता है कि आजकल कहते हैं आंख का दान, गुर्दे का दान, ये जो चला है ना अंग दान, ये एक उदाहरण मिलता है कि और फिर अब इंद्र के पास वज्र है, वृत्तासुर के साथ भारी युद्ध हुआ है और उस भारी युद्ध के अंदर वृत्तासुर के ऐसी चोट मारी वृत्तासुर ने, इंद्र नीचे गिरा, एरा उसका हाथ ही नीचे गिरा, उसके हाथ से वज्र गिर गया, हाहाकार बच गया। लेकिन वृत्तासुर कहता है इंद्र उठो, वज्र उठाओ, तुम्हें भगवान ने वज्र दिया है, तुम्हारी विजय होगी, तुम घबरा क्यों रहे हो, मेरे गुरु शंकरषण ने मुझे कहा है तो बहुत अच्छी शंकरषण बलराम की शिक्षाएं 3-4 श्लोकों में वृत्तासुर बोलता है। पहले कि शंकरषण कहता है मेरे भक्तों का मैं सास दास अनुदास कब बनूंगा, और मुख से आपका गुणगान करूं, सबूर शरीर से आपकी सेवा करूं, मन से आपका चिंतन करूं, वो कब मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर कहता है भगवान मुझे न स्वर्ग चाहिए, न सत्य लोक चाहिए, न धरती के ऊपर राज चाहिए, न रसातल का राज चाहिए, मैं तो विरह में आपको पाऊं, ये बस एक मेरा धन है कि आपकी स्मृति मुझे बनी रहे। फिर कहता है कि जैसे अजात पक्षी जिसके अभी पर नहीं निकले हैं अपनी माँ लाएगी खिलाएगी उसकी प्रतीक्षा करता है, ऐसे मैं सदा आपके स्मरण में रहूं और आप भी हमारा पालन पोषण करें। फिर लगा कि पक्षी के पांव पर निकल आते हैं तो उड़ने लगता है तो माँ का प्रतीक्षा नहीं करता है। तब कहता है वो बछड़ा जो कुंटे में बंधा हुआ है जिसकी माँ चरने गई है वो भी जा सकूं, मेरे कर्म के कारण कहीं भी मुझे जूनी मिले, बस एक मेरे ऊपर कृपा करना, आपके भक्तों से मेरी मैत्री हो, आपके भक्तों का संग मिले, संसार के घर गृहस्थी में आसक्ति न हो, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। अब तो इंद्र ने एक अस्त्र एक चक्कर से बाजू काट दिया, दूसरे चक्कर से दूसरा बाजू काट दिया, वृत्तासुर ने मुंह खोला और इंद्र को निकल गया, हाहाकार मच गया, इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया, लेकिन वृत्तासुर समाधि में बैठ गया। इंद्र को नारायण कवच पहना हुआ था, इंद्र के हाथ में सुदर्शन चक्र वज्र था 1000 दांतों वाला, वृत्तासुर का शरीर काट के इंद्र बाहर निकला है और वृत्तासुर की भक्ति को देख के इंद्र कहता है मुझे डर देगा और दुख भी देगा, समय आने के उत्तर पुत्र हुआ, जिस रानी ने पुत्र को जन्म दिया वो रानी तो विशेष हो गई, बाकी रानियों को ऐसी ईर्ष्या हुई कि थोड़े ही समय के बाद उस बच्चे को विष दे दिया। अब बच्चे के मरने के ऊपर रोदन होने लगा, राजा अब बड़ा दुखी हो गया। उस वक्त अंगीरा के साथ नारद जी आए और कहा कि महाराज, आप जिस बालक के लिए रो रहे हो, क्या ये जीवित हो जाएगा क्या? और आप हैं कौन, ऐसा उपदेश दुख के समय दे रहे हैं? अंगीरा ने कहा, वही हूं जिसने आपको आशीर्वाद दिया था पुत्र का, ये नारद मेरे साथ आए। नारद ने कहा कि आपके बेटे को अभी बुलाता हूं। नारद ने कहा, बेटा आ जाओ। वो शरीर उठ के बैठ गया। पिता कहता है, मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? वो बच्चा कहता है, पिताजी कई जन्मों में आपका पिता मैं बना हूं, कई जन्म हम दूसरे से मिलते हैं बिछड़ते हैं, अभी मेरे जन्म का इतना ही समय आपके साथ संबंध था, अब मेरे को जाने दीजिए। भारत के रिजर्व बैंक की प्रॉपर्टी है, यही लिखा है ना, किसी का है क्या? हाँ, हम सब उसको अपना मान के बैठते हैं कि नहीं? ऐसे जीव आत्मा के ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ कृष्णा, ममाई वंश जीव लोके। हम समझते हैं हमारा है, पकड़ के उसको बैठते, जितने दिन हमारी जेब में तब तक हमारा है, जब दूसरे की जेब में गया वही नोट दूसरे की जेब में गया, लेकिन वो समझता है मेरा है। ऐसे आज जो मेरा बच्चा है, कल दूसरे का था, परसों तीसरे का था, पता नहीं जो बच्चा मेरा है वो मेरे सुख देने आया है कि दुख देने आया है। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि बच्चे सुख देने वाले भी आते हैं और दुख देने वाले भी आते हैं। तो यहाँ चित्रकेतु महाराज को नारद ने संकृष्ण मंत्र का उच्चारण करना सिखाया और उस मंत्र को जपने से आज ये विद्याधर बन। वैसे भी हर जगह का अलग अलग नेम होते हैं, नेम अलग अलग होते हैं, सब नेम देवताओं के नेम अलग है, धरती के नेम अलग है, सब हमारे नेम दूसरी जगह में नेम नहीं लगा सकते। लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया, उसने बोला, कौन आ गया है हमको शिक्षा देने वाला, जा दुष्ट असुर बन जा। एकदम नीचे उतरा है और आके प्रणाम किया शंकर जी को, कहा, गौरी आपको मेरे वचनों से कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करना, असुर बनने में मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं असुर बन जाऊंगा, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपको कष्ट दिया है। अब ये कहकर और ये चित्रकेतु फिर आगे वृतासुर बना पार्वती के, लेकिन भक्ति तो उसके हृदय में भरी हुई थी, मरवा दिया है। तो उसने अपने पति कश्यप को कहा कि अब मेरे को ये है ना, दो यही अध्याय बचते हैं ना अभी पंडित जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये भी छठा स्कंद 19 अध्यायों का है, जिसमें पोषण भगवान अपने नाम से 3 अध्यायों में करते हैं, रूप से करते हैं, नाद से करते हैं और फिर भगवान पूजा से करते हैं। ये भगवान के पोषण में अंतिम 2 अध्याय में पूजा के अध्याय है, जिसमें दित्ति कश्यप को प्रसन्न करके कहती है, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए, पुत्र उत्पन्न। इंद्र एक ब्राह्मण आके उसकी सेवा करने लग गया और इंतजार कर रहा है कि ये दित्ति कब कोई त्रुटि करती है पूजा में। एक दिन थकी हुई दित्ति रात को भोजन किया, हाथ नहीं धुआ, धोया नहीं, मुंह धोया नहीं, और उस वक्त इंद्र ने उसके उदर में प्रवेश करके और वज्र से एक बच्चे को 7 का टुकड़ा कर दिया। उसने बोला, मारो मत मारो मत मारो मत, 7 का और टुकड़ा किया, 49 हो गए, मरे नहीं। परीक्षित महाराज कहता है, इंद्र के वजह से नहीं मरे? सुखदेव महाराज मुस्कुराते कहते हैं, महाराज परीक्षित, आप ब्रह्मस्तर से नहीं मरे, आपकी जिसने रक्षा की, क्या वो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते? देख, महेक साल की दित्ति की भगवान की भक्ति के प्रताप से वो बच्चा मरा नहीं। अब इंद्र बाहर आके प्रणाम करके कहता है, माता मैं इंद्रवन के ऊपर आरोप है, सीधा सा पक्षपात का, 7वां स्कंद इस बात का प्रमाण है कि नहीं, प्रहलाद असुर का पुत्र था, उसके लिए भगवान नरसिंह देव अवतार लेके आए ना, कैसे कह सकते हो कि असुरों की भगवान रक्षा नहीं करते? एक प्रहलाद के लिए साक्षात भगवान नरसिंह देव का अवतार हुआ है, इसलिए उत्तर देते हैं सुखदेव महाराज, भगवान पक्षपात नहीं करता है। जैसे उदाहरण दिया जाए, बिजली तो एक है, देखो ट्यूबलाइट में रोशनी दे रही है, माइक्रोफोन से आवाज को बढ़ा रही है, फ्रिज को ठंडा कर रही है, हीटर को गर्म कर रही है, इसमें बिजली का दोष है, यंत्र का अंतर है। ऐसे मानव के अंतःकरण के यंत्र के हस्तिनापुर के राजमहल में नारद जी का प्रवचन है और युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। और नारद और कहते हैं सुखदेव महाराज परीक्षित